हैं। चारवाक कहते हैं कि चाहे उधार लेके पियो लेकिन घी पियो।
अच्छा, जैसे चारवाक कोई व्यक्ति था या फिर एक कल्ट की फिलॉसफी रही है?
चारवाक का मतलब है चारू वाक। चारू मतलब सुखी, वाक मतलब जो बातें सुख दे।
वेदों के हिसाब से आस्तिक या नास्तिक होता है, पर आमतौर पर जैसे हम समझते हैं कि आस्तिक वो जो भगवान को मानता है, नास्तिक वो जो भगवान को नहीं मानता, तो क्या ये गलत है?
अद्वैतवाद कहता है कि सारी दुनिया सिर्फ एक ही चीज से बनी है और वो एक चीज क्या है? भ्रम।
तो मतलब ईश्वर और राक्षस नहीं है?
नहीं। कांट कहते हैं I had to destroy my reason to make room for faith, मतलब मुझे अपने रीजन को खत्म करना पड़ा ताकि मैं अपने लिए फेथ के लिए जगह बना सकूं। तो
इट इज लाइक लॉजिक किल्स मैजिक।
अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, यानी जिस जीवन को हमने एग्जामिन ही नहीं किया, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सही है गलत है, अगर मैंने कभी सोचा ही नहीं तो उस जीवन का क्या फायदा? ईश्वर जानने की चीज नहीं, मानने की चीज।
तनु मैम, हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिलॉसफी की बात करेंगे कि फिलॉसफी एज अ सब्जेक्ट क्या है, और जो नहीं जानता है मतलब कॉमन मैन, उसे फिलॉसफी को कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्यों ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आप क्यों उसके टीचर बने?
थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। फिलॉसफी को हिंदी में कहते हैं दर्शन। दर्शन मतलब किसी चीज़ को देखने का तरीका। तो हम दुनिया को कैसे देखते हैं वही हमारा दर्शन हो जाता है। मतलब अगर मैं दुनिया को देख रही हूँ और मैं मान रही हूँ कि ईश्वर है, तो एक अलग तरीके से हम जीवन जिएंगे। और अगर हम देख रहे हैं और हमें लग रहा है कि ईश्वर नहीं है, तो हमारा पूरा जीने का तरीका एकदम अलग हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हमें ऐसा लग रहा है कि दुनिया तो एटम्स की बनी है, तो हम अलग तरीके से जिएंगे। जैसे कि एकदम सिंपल एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि अगर हमें लगता है कि चीज़ें सब एटम्स से बनी हैं, हमारा शरीर भी एटम्स से बना है, हम भी एटम्स से बने हैं, और अगर आप साइकोलॉजी और बायोलॉजी की जो हम भी अभी की हमारी अवधारणा है उसको आप देखोगे, तो उसमें क्या है कि हमारी फीलिंग्स क्या हैं, वो तो हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं, है ना। यहाँ से एक न्यूरल रिसेप्टर से कुछ ऑक्सीटोसिन निकला, सेरोटोनिन निकला, डोपामिन निकला, ये सब हार्मोन्स के नाम हैं। वो निकले और दूसरे में जाए गए तो आप खुश हो गए, डोपामिन निकला तो आप खुश हो गए, सेरोटोनिन निकला तो आप दुखी हो गए, है ना। आपको आप किसी से मिले, किसी के आप अपने दोस्त से मिले, माँ से मिले, आपको खुशी हुई तो ऑक्सीटोसिन निकला तो आप बहुत खुश हो गए, आपके मन में शांति की फीलिंग आई। तो अगर हम ये मान रहे हैं, तो अगर हमारा वर्ल्ड व्यू ऐसा है, यानी हमारा दर्शन ऐसा है, हम दुनिया को ऐसे देख रहे हैं कि सिर्फ केमिकल्स हैं, तो प्यार एक केमिकल बन गया। उसी तरीके से हमारे दुख भी एक केमिकल बन गया। तो वो ऐसा है कि हमने इंजेक्शन लगाया तो शायद हम दुखी तो खुश हो जाए।
ऐसा होता है रियल में?
नहीं होता कुछ हद तक, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। उसी का ऑपोजिट वर्ल्ड व्यू है दर्शन। तो अगर ऐसा सोच रहे हैं ना, तो कहीं कहीं हम चारवाक के बड़े करीब हो गए।
चारवाक क्या?
चारवाक एक फिलॉसफी है। तो हमारे भारतीय दर्शन में एक तरीके से हमें माना जाए, वैसे तो बहुत सारे दर्शन हैं, लेकिन मुख्य तौर पे 9 दर्शन माने गए हैं कि 9 तरीके से हमारे पुराने जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने देखा कि भाई 9 तरीके से दुनिया को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि दुनिया आखिर बनी कैसे है, क्या कारण है इस दुनिया के बनने का, इस दुनिया के अंदर हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, किस तरीके से हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, कैसे एक्ट करना चाहिए, कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। तो ये जो 9 तरीके हैं, 9 तरीके की सोच है ना। जैसे चारवाक एक दर्शन है, तो इसको हम लोग नास्तिक दर्शन बोलते हैं। नास्तिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वेदों में विश्वास नहीं करते ना, वेदों के क्राइटेरिया पे हमने आस्तिक नास्तिक करा है फिलॉसफी में, दर्शन में। तो जैसे चारवाक है ना, तो चारवाक समझते हैं कि भगवान नहीं है ना, और ऐसी कोई भी चीज़ को वो नहीं मानते जिसे हम देख नहीं सकते। जैसे कि क्या हम देवी देवता को देख सकते हैं?
नहीं।
तो वो नहीं मानेंगे।
ओके।
हम जिस भी चीज़ को नहीं देख सकते, कर्मों को नहीं देख सकते,
हवा को नहीं देख सकते, तो वो भी नहीं मानेंगे।
हवा महसूस कर सकते हैं ना।
ओके, तो महसूस करने वालों को मान जाएंगे।
हाँ, महसूस, परसेप्शन, मतलब जिसको भी वो महसूस कर सकते हैं, जैसे खाने को टेस्ट कर सकते हैं, तो टेस्ट कर सकते हैं, तो खाने को मानेंगे।
ओके,
तो जिस चीज को वो महसूस कर सकते हैं,
तो भूत प्रेत भी नहीं मानेंगे।
भूत प्रेत भी नहीं मानेंगे।
ओके,
तो भगवान भी नहीं, आत्मा भी नहीं मानेंगे, क्योंकि आत्मा भी दिखती नहीं है, महसूस नहीं होती, आत्मा भी नहीं मानेंगे। तो अब जब चार्वाक दर्शन पे हम आ गए तो यानी कि उसने आत्मा है नहीं, ईश्वर है नहीं, और देवी देवता नहीं है, स्वर्ग नर्क नहीं है, है ना, कर्म है नहीं,
नहीं है,
पाप पुण्य नहीं है। तो अब जो ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए पाप पुण्य है नहीं, तो उसका जीवन दर्शन मतलब वो कैसे जिएगा अपनी नॉर्मल लाइफ, कुछ भी करेगा। अब वो कुछ भी करेगा मतलब वो कहेगा खाओ पियो ऐश करो मित्रों।
यूजुअली क्योंकि हमें भगवान का डर होता है, पाप का डर होता है, पुण्य का डर होता है, तो हम थोड़ा डिसिप्लिन में रहते हैं।
एग्जैक्टली
तो जब हमें वैसा नहीं रहेगा तो हम कुछ भी करेंगे,
कुछ भी करेंगे,
तो बदमाश लोग हैं ये तो।
नहीं, एक सोचने का तरीका है ना, एक दर्शन है, एक दुनिया को देखने का तरीका है।
ओके,
और आप देखेंगे कि बहुत सारे व्यक्ति आज के समय में अपना जीवन चार्वाक की तरह ही जी रहे हैं।
कैसे?
मोस्ट ऑफ द पीपल, उनको ऐसा वो कह सकते हैं कि हाँ मतलब भगवान में पता नहीं है या नहीं, एथिज्म भी एक अपने आप में एक दर्शन, एथिज्म मतलब जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते। उसी तरह जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और या साइंटिफिक कम्युनिटी है, वो चार्वाक के बड़ा नज़दीक ही तो है। वो भी नहीं मानते पाप पुण्य, वो भी नहीं कर्मों को मानते, वो भी आत्मा नहीं मानते, भगवान नहीं मानते, स्वर्ग नरक नहीं मानते, पुनर्जन्म नहीं मानते, है ना। चार्वाक भी यही कह रहा है कि चार्वाक कहता है बड़ी अच्छी बात कहता है, वो कहते हैं कि देखो जैसे पान होता है ना, तो पान सुपारी कत्था इन सबको मिलाते हैं, लेकिन अंत में ना वो लाल लाल रंग निकल आता है ना। पान के पत्ते में लाल रंग था वो तो हरे रंग का था, ना सुपारी में रंग था, तो बाद में ये लाल रंग आया कहाँ से? इनके मिश्रण से आ गया। तो चार्वाक कहता है उसी तरह से हमारे जो चार तत्व है, धरती अग्नि वायु, और ये मिलेंगे और हमारे अंदर ये जो हम बात कर रहे हैं कॉन्शियसनेस है, चेतना है, ये आ जाएगी। यानी और सेम साइंस कहती है, साइंस कहती है एटम्स मिलेंगे एक पर्टिकुलर तरीके से मिलेंगे, और हॉर्मोन्स निकलेंगे, और हॉर्मोन्स निकलेंगे तो कभी हम खुश हो जाएंगे, कभी दुखी हो जाएंगे।
मैम हमने तो पांच तत्व सुने।
हाँ, पांचवा तत्व भी नहीं मानता, ईथर।
ईथर नहीं मानते ये?
नहीं, चार क्योंकि दिखता नहीं है।
ओके, जैसे चार्वाक कोई व्यक्ति था या फिर एक कल्ट की फिलॉसफी रही है?
नहीं, ये एक ऐसा माना जाता है बहुत लंबा एक कल्ट रहा है जिसकी पूरी फिलॉसफी को हम चार्वाक फिलॉसफी कह देते हैं। चार्वाक के पीछे भी कई सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। चार्वाक का मतलब है चारू वाक।
ओके,
चारू मतलब सुखी, वाक मतलब जो बातें सुख दे। जैसे कि अगर मैं टीचर हूँ, अब मैं अपने बच्चों को बोलूँ बेटा पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करो, तो उनको लगेगा अरे तो बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और अगर यहीं पे कोई व्यक्ति कहे अरे पढ़ाई वढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है, मेहनत वेहनत की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, ये कैसी बात है, ये बड़ी
खुशी
देने वाली बात है। तो चार्वाक वैसी बातें करते हैं। चार्वाक कहते हैं कि चाहे उधार लेके पियो लेकिन घी पियो।
अच्छा। ये सही में लिखा हुआ है?
सच में लिखा हुआ है उनके ग्रंथों में। उनका एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहावत है, वो कहते हैं पीतवा पीतवा पुनः पीतवा, मतलब पियो पियो जब तक पियो, पियो मतलब एल्कोहल।
अच्छा, वही मैं कहूँ घी पीने की बात कर रहे हैं
इसमें एल्कोहल
जी,
पियो पियो पीतवा पीतवा पुनः पीतवा, है ना। और कब तक पीना है? जब तक कि गिर ना पड़ो, और जब गिर के आप उठो तो पुनः पीतवा।
मतलब कहीं ना कहीं फिलॉसफी है कि आपको खुश रहना जरूरी है,
खुश रहना जरूरी है। तो अपनी खुशी के लिए अगर आपको कुछ सैक्रिफाइस भी करना पड़ रहा है, अपनी खुशी के लिए आपको कुछ भी करना पड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को कोई परेशानी नहीं होती। तो आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि 100 में से 2, 3, 4, 5 कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसे मिल ही जाते हैं जो ऐसा लगता है कि यार ये ना मतलब मेरे को तो, मैं क्योंकि फिलॉसफी पढ़ाती हूँ शायद इसलिए मैं तो आइडेंटिफाई कर लेती हूँ, ये तो चार्वाक दर्शन वाला व्यक्ति है।
चार्वाक घूम रहे हैं आजकल भी,
आजकल भी चार्वाक घूम रहे हैं।
आपने थोड़ी देर पहले कहा कि वेदों के हिसाब से आस्तिक या नास्तिक होता है, पर आमतौर पर जैसे हम समझते हैं कि आस्तिक वो जो भगवान को मानता है, नास्तिक वो जो भगवान को नहीं मानता।
हाँ।
तो क्या ये गलत है?
नहीं, गलत नहीं कहेंगे, वो आमतौर पर हमारी कोलोकियल भाषा है, मतलब जो एक बोलने चालने के तरीके में। लेकिन दर्शन जब हम एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ते हैं तो वहाँ पर आस्तिक और नास्तिक का मतलब वेदों से लिया गया है, है ना। इसी को इंग्लिश में हेट्रोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स कर देते हैं, लेकिन आस्तिक का मतलब है कि जो वेदों में आस्था रखते हैं।
okay.
और नास्तिक मतलब जो वेदों में आस्था नहीं रखते।
बस यही
क्लासिफिकेशन,
वेद वही जो हमारे चार वेद हैं उन्हीं पे। ओके, तो ये चार्वाक काफी इंटरेस्टिंग। तो इस हर एक फिलॉसफी में कुछ फ्लॉज भी हैं इसका मतलब?
बिल्कुल बिल्कुल।
तो जैसे चार्वाक मैंने सुना तो ये कुछ, कोई सेगमेंट कहेगा, कुछ लोग कहेंगे इसको ये क्या फालतू की फिलॉसफी है, ठीक है, ऐसा भी कहेंगे।
बिल्कुल,
तो
बाकी जितने हैं
अच्छा वो सब चार्वाक को
जो चार्वाक नहीं है वो चारवाक की फिलॉसफी क्या क्रिटिसिज्म
करेंगे? बाकी कौन है?
बाकी ऐसे नास्तिक दर्शन में हम लोग देखें तो चारवाक, जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये तीन आते हैं। और इसी के अंदर जो हमारे आस्तिक दर्शन है, जो वेदों में विश्वास रखते हैं, उसके अंदर सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत।
सो अभी मैं थोड़ा जैनिज्म और बुद्धिज्म में आपसे पूछना चाहूँगा। हिंदू धर्म में भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध क्या एक ही हैं कि अलग अलग हैं?
हिंदू धर्म में
क्योंकि कई सारे लोग गौतम बुद्ध को नहीं मानते कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, आपने सुना ये?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये ना मतलब मुझे जो लगता है पर्सनली कि ये ना अडॉप्शन हो जाता है, अडॉप्शन इन द सेंस कि जिस व्यक्ति की विचारधारा से मुख्य समाज एक इन्फ्लुएंस हो रहा होता है ना, उसे सब अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि वैष्णव धर्म जो है, हमारा हिंदू धर्म है, भजन कीर्तन उसमें बहुत पॉपुलर हुआ, जबकि जैनिज्म के अंदर भजन कीर्तन का, बुद्धिज्म के अंदर भजन कीर्तन का, इन सब का कोई बहुत ज़्यादा रोल है नहीं। मतलब इनकी फिलॉसफी, अगर हम दर्शन की बात करें तो उसमें भजन कीर्तन या इन सब चीज़ों का कोई ज़्यादा रोल है नहीं, लेकिन वहाँ पे हो रहा था, उन्होंने कहा हम भी करेंगे। तो उसी तरीके से जब बुद्ध भगवान बहुत पॉपुलर हुए, है ना, बुद्ध भगवान की बातें लगी कि हाँ वही वाली बातें हैं जैसी शायद हम लोग कर रहे थे, हमारे वेदों में लिखी थी, तो वहीं से उन्हें भी इनकलकेट कर लिया कि ये भी एक हमारे अवतार हो गए। तो कुछ लोगों ने, जिन्होंने माना उन्होंने इनकलकेट कर लिया, जिन्होंने नहीं माना वो रह गया।
तो आप मुझे ये समझाइए कि जैनिज्म की क्या फिलॉसफी है और बुद्धिज्म की क्या फिलॉसफी है?
हाँ, थोड़ा छोटे में समझाना थोड़ा मुश्किल है,
तो बड़े समझा दीजिए।
बुद्धिज्म पहले बता देती हूँ। तो बुद्धिज्म मानता है कि हमारा जो जीवन है वो हर चीज़, मतलब हमारे जीवन में क्या, इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हर चीज़ हर पल बदल रही है। जैसे कि हमारा शरीर, आपको जान के हैरानी होगी कि 7 दिन के अंदर हमारे लगभग बहुत सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं, और लगभग लगभग 120 दिन के अंदर एकदम टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है हमारी बॉडी का। यानी कि हमारी बॉडी के सेल्स हर पल बदल रहे हैं, हर पल बदल रहे हैं, हर पल बदल रहे हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि जो सेल आपका पहले दिन पे था, वो जो अंत वाला जो ये समय है, इसमें एक भी सेल नहीं बचा, वो
तो हम सेलुलर लेवल पे चेंज हो जाते हैं,
पूरे चेंज हो चुके हैं पूरे, यानी कि हम हर पल बदल रहे हैं। जब मैंने एंटर किया था उससे लेके अब तक कितने ही बदलाव आ चुके। ये टेबल हमें लग रहा है परमानेंट है, लेकिन ये टेबल को अगर हम पूरे स्पेक्ट्रम में देखें, आज से 10 साल बाद कैसी दिखेगी ये, 100 साल बाद कैसी दिखेगी, 500 साल बाद तो शायद ये टेबल दिखेगी नहीं, ये मिट्टी में मिल जाएगी। तो बेसिकली हमें लग रहा है कि अभी ये स्थाई है, परमानेंट है, लेकिन असलियत में ये बदल रही है। हमारे विचार हर पल बदल रहे हैं और हर क्षण के हिसाब से बदल रहे हैं। जैसे कि मैं अपने बच्चों को एक हमेशा कहानी सुनाती हूँ बुद्धिज्म से रिलेटेड, कि एक बार एक आदमी बड़ा प्यासा था, बहुत प्यास लगी थी उसको, बहुत धूप थी, तो वो एक घर में जाता है, गेट खटखटाता है और गेट खटखटा के कहता है कि मुझे पानी मिलेगा? तो एक लेडी आती है, वो कहती है कि ठीक है लाती हूँ ना। तो वो कहता है कितनी अच्छी लेडी है बताओ, मैंने इतनी गर्मी में एक अनजान व्यक्ति ने पानी मांगा और ये पानी देने के लिए तैयार हो गई। अब वो 5 मिनट तक वेट करता रहा धूप में, तो थोड़ी देर बाद उसको लगा कि कैसी औरत है, पानी का कह के गई थी कि अभी लाती हूँ और अभी तक नहीं आई, मतलब उसने उसको पता था मेरे को प्यास लगी और धूप में और खड़ा कर गई। अब एकदम से अच्छे से बुरा। फिर 10 मिनट बाद वो लेडी निकल कर आती है, वो कहती है अरे भैया मुझे लगा तुम्हें प्यास लगी है, मैंने सोचा शिकंजी बना देती हूँ। उसने कहा क्या कितनी बढ़िया लेडी है, बताओ कि आज शिकंजी पिलेगी, मतलब कितना इसने ख्याल रखा है, एक अनजान व्यक्ति के लिए शिकंजी बना रही है। तो उसने शिकंजी पी, उसमें सिर्फ नमक नींबू था। उसने कहा कैसी बेवकूफ़ औरत है कि इतनी गर्मी में मैं आया हूँ और सिर्फ नमक नींबू से तो और मतलब मेरी प्यास भड़केगी, और मुझे नमक नींबू वाली पानी दे दिया। तो तभी वो लेडी कहती है अरे रुको भैया, है ना, मैं चीनी अलग से लाई हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें डायबिटीज़ है कि नहीं है, तुम कितनी चीनी लोगे। कितनी अच्छी लेडी है कि मेरे सेहत का भी ख्याल रख रही है। मतलब इन अ स्पैन ऑफ 15 मिनट्स हमने एक ही व्यक्ति के प्रति अपने विचार कम से कम नहीं तो 10 बार बदल लिए। अभी अच्छा अभी बुरा, अभी अच्छा अभी बुरा, तो हमारे विचार भी स्टेबल नहीं है, हमारे विचार भी परमानेंट नहीं है, हमारी क्वालिटीज़ भी परमानेंट नहीं है। हम आज आज एक चीज़ को पसंद करते हैं, हो सकता है 4 साल बाद 5 साल बाद हम उसे पसंद ही ना करें।
इंसानों के में भी है कि आज पसंद आ रहा नहीं पसंद आएगा।
एग्जैक्टली। तो बुद्धिज्म का कहना यह है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी स्थाई नहीं है, और जब कुछ स्थाई है ही नहीं तो किस चीज़ से दिल लगाना भाई। दुख कब होगा? जब दिल लगेगा, जब अटैचमेंट होगी। मैं आज मुझे अगर ये कप टूट जाए तो मुझे तब दुख होगा जब मुझे लग रहा है यार ये मेरा कप है।
सारे दुखों का कारण एक ही अटैचमेंट,
अटैचमेंट है ना। जैसे कि बहुत सारे व्यक्ति हर रोज पूरी दुनिया में मरते हैं, है ना। जैसे अगर हम बात करें किसी भी कॉन्टिनेंट की, देश की, जैसे बहुत सारे लोग आज अफ्रीका में भी मर रहे होंगे, है ना। किसी को बहुत सारी बीमारियां भी हो रही होंगी। अभी दो दो वॉर चल रहे थे, इसराइल पैलेस्टीन वॉर चल रहा था, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था। ये दोनों वॉर्स चल रहे थे इतने बड़े बड़े, हजारों लाखों लोगों के घर तबाह हो गए, लोग मर गए, मतलब कितनी तकलीफें उन्होंने झेली। लेकिन हम में से कोई क्यों नहीं रोया?
हमारा नहीं था कोई
अटैचमेंट। सो महात्मा बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने ये अपना एसेंस निकाला। उन्होंने कहा कि सारे दुखों की जड़ है अटैचमेंट। अगर हम ये अटैचमेंट हटा लें तो दुख होगा ही नहीं। तो दुनिया में हम आते हैं, हमें हजारों टाइप के दुख मिलते हैं, तो दुख का कारण और कुछ नहीं है, हम खुद हैं। ये हमारा जो ये है ना, ये अटैचमेंट, ये हमारे दुख का कारण है। तो उन्होंने बस ये दुख को हटाने का तरीका बताया, उन्होंने ये अटैचमेंट को हटाने का तरीका बताया, 8 स्टेप्स बताए कि भैया इन 8 स्टेप्स को फॉलो करो, ये तुम अटैचमेंट और तुम्हारा धीरे धीरे कम हो जाएगा और तुम्हें दुनिया में दुख नहीं होगा।
क्या है वो 8 स्टेप?
वो पूरे बहुत लंबे स्टेप्स है,
नाम बता दो आप लोग।
उसको कहते हैं हमारा अष्टांगिक मार्ग।
अष्टांगिक मार्ग,
हाँ, अष्टांगिक मार्ग ऑफ बुद्धिज्म, है ना। 8 स्टेप है जिसके अंदर हमारी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हमारा विजन ठीक होना, हमारी नॉलेज ठीक होना, हमारा एक्शंस ठीक होना, हमारी लाइवलीहुड ठीक होना। अगर आपकी लाइवलीहुड मतलब आपकी अगर आजीविका ही सही नहीं, आप जो काम करते हो वो सही नहीं करते हो, तो आप हमेशा टेंशन में रहोगे। यानी आपने धोखा दिया किसी को तो आप हमेशा टेंशन में रहोगे यार क्या करा है। ऊपर से बड़े संपन्न दिखोगे लेकिन अंदर मन में दुखी रहोगे,
शांत रहोगे,
अशांत रहोगे। तो उसी तरीके से सारी है उसके बाद अंतिम में आके आते आते उनका सारा जो फोकस हो जाता है वो समाधि और निर्वाण की तरफ चला जाता है। तो 8 स्टेप्स हैं, पूरे पूरे प्रॉपर फिलॉसफी है। और अगर नाम हम समझें तो वो कहते हैं कि प्रत्यय समुत्पाद से अनित्यवाद, अनित्यवाद से क्षणिकवाद। क्षणिकवाद आपने शायद नाम सुना होगा।
नहीं सुना।
क्षणिकवाद मतलब हर क्षण चीजें बदल रही हैं।
ओके।
तो बहुत लंबी कहानी है कि वो सोल के बारे में क्या कहते हैं, रीबर्थ को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कर्मा थ्योरी। बट ओवरऑल उनके हिसाब से हमें इस दुख, इस दुनिया में हम आए हैं, 4 सत्य उनके, 4 आर्य सत्य हैं। पहला सत्य है कि दुख, वो कहते हैं हम सबको दुख है, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसे दुख ना हो। वो कहते हैं इवन की जो सुख लग रही, सुखी लग रहे हैं ना, जिस चीज़ को हम सुख मान रहे हैं वो भी दुख है। कहते हैं कैसे? कहते हैं देखो मेरे हाथ में चोट लगी तो दुख है, तो पता ही है सबको, यानी लेकिन मैंने किसी व्यक्ति के साथ किसी व्यक्ति को पसंद किया, अब ये तो सुख की बात है कि किसी को प्यार किया या किसी को पसंद किया। कहते हैं लेकिन अंत में वो भी दुखी है। क्यों? क्योंकि अब आपको डर लग रहा है कहीं वो मुझे छोड़ के ना चली जाए या चला जाए, ये ना हो जाए। आपको बिजनेस में, आपकी प्रोफेशन में ग्रोथ हुई, खुशी की बात है, लेकिन जैसे ही ग्रोथ होती है सबसे पहले क्या आता है इंसान के मन में अक्सर, कि अरे यार इसे मेंटेन रखना है या इसे बढ़ाना है, नजर ना लग जाए, इसे बढ़ाना है या इसे मेंटेन रखना है। तो वो जो हमारे अंदर की वो अपने हमारे अंदर डर लेकर आता है और वही दुख का कारण बनता है। हमारी एक्सपेक्टेशंस, जैसे कि हम अगर बुद्ध के हिसाब से समझें तो अगर हम, हमारा दोस्त, हमें लग रहा था हमारा दोस्त हमारे फ़ोन करने पर तुरंत आ जाएगा, हमें लग रहा था कि हमारा हस्बैंड ऐसे बात करेगा या हमारी वाइफ ऐसे बात करेगी, हमें लग रहा था कि हमारी माँ को ऐसे बात करना चाहिए हमसे, या हमें लग रहा था कि हमारे स्टाफ को ऐसा करना चाहिए या हमें उनके साथ ऐसा करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये सब तो एक्सपेक्टेशन है ना, किसी ने वादा थोड़े ना किया था। और क्योंकि हमने एक्सपेक्टेशन लगाई इसीलिए हमें दुख हो रहा है। अगर एक्सपेक्टेशन नहीं होती तो दुख भी नहीं होता। तो पहला सत्य वो बोलते हैं कि भाई सबसे पहला सत्य दुख, दूसरा सत्य है कि दुख का कारण है. दुख का कारण क्या है? तीसरा सत्य कि सब कुछ टेम्पररी है. और जब सब कुछ टेम्पररी है, जैसे ही आपको ये समझ में आ गया कि यार जिस व्यक्ति के लिए मैं आज इतना दुखी हो रहा हूँ वो आदमी भी टेम्पररी है और मैं खुद टेम्पररी हूँ, उसकी छोड़ो. आज से 60 साल बाद जिस चीज़ पे अच्छा सबसे सपोजली एक ग्लास गिरा और मुझे गुस्सा आया, लेकिन अगर मेरे दिमाग में तुरंत ही ये बात आ जाए कि यार ये ग्लास तो वैसे भी आज नहीं तो 10 दिन बाद टूटना था, है ना. जिस व्यक्ति पे मुझे गुस्सा करने की कोशिश कर रहे हैं हम, वो व्यक्ति भी 50 साल बाद शायद कभी नहीं रहे, कहीं नहीं रहेगा. और जो खुद गुस्सा करने की कोशिश कर रहा है वो खुद 50 साल बाद या 60 साल बाद कहीं नहीं रहेगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा. तो कौन किस पे क्यों गुस्सा करेगा?
पॉइंट है.
अटैचमेंट खत्म. और जैसे ही अटैचमेंट खत्म, चौथा दुख निरोध, मतलब दुख का अंत हो जाता है वही 8 स्टेप्स को फॉलो करके.
सो ये बुद्धिज्म की फिलॉसफी तो काफी प्रैक्टिकल लग रही है सुनने में.
बहुत अच्छी फिलॉसफी, साइंटिफिक है.
दैट इज व्हाई बुद्धिज्म आई गेस लोग भारत के बाहर भी काफी लोग फॉलो कर रहे हैं.
वेरी साइंटिफिक फिलॉसफी, वेरी साइंटिफिक एंड वेरी यूजफुल इन प्रैक्टिकल लाइफ.
इसके फ्लॉज क्या हैं इस फिलॉसफी के?
इनके फ्लॉज ऐसे हैं कि ऐसा हुआ था कि जब बुद्धा लगभग ऐसे 10 क्वेश्चंस थे, 10 से 14, है ना, कुछ लोग 10 मानते हैं, कुछ लोग 14 मानते हैं, ऐसे 10 से 14 क्वेश्चंस थे जिनका जवाब बुद्ध ने नहीं दिया, क्योंकि उनका मानना यह था कि इन सब फालतू बातों में हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए. जैसे बुद्ध की खुद की एक एग्जाम्पल है कि बुद्ध के पास कोई व्यक्ति गया, उसने कहा ये बताइए बुद्ध कि भगवान है कि नहीं, या फिर एक और दूसरा व्यक्ति भी, उसने कहा ये बताइए बुद्ध की आत्मा है कि नहीं, है ना, या ये बताइए कि मेरे मरने के बाद क्या होगा. अब ये सारे सवाल बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं. तो बुद्ध ने कहा कि देखो ना, इन सब सवालों के जवाब नहीं देंगे हम. वो साइलेंट रहते थे, मुस्कुरा देते थे. वो कहते थे कि आप क्यों नहीं जवाब देते हैं? वो कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के दिल में तीर लग जाए, अगर आज कोई व्यक्ति है उसके दिल में तीर लग गया, तो वो सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसे तीर को निकाल के अपना इलाज करना चाहिए. कहते लेकिन अगर कोई व्यक्ति तीर लगा और वो बैठ के विचार कर रहा हो कि यार ये तीर किस से बना है, लकड़ी से बना है कि स्टील से बना है कि लोहे से बना है, यार ये तीर, ये ना तीर का डिजाइन थोड़ा बेहतर हो सकता था, या इसके, तो बेसिकली क्या कर रहा है वो?
टाइम वेस्ट कर रहा है.
वो टाइम वेस्ट कर रहा है. तो बुद्ध का कहना ये था कि देखो दुख है और दुख को हटाने का रास्ता तुम्हें पता चल गया है, तो ये फालतू की चीज़ों में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो कि ये है या नहीं है? जो रास्ता है उसे फॉलो करो, अपना इलाज करो, दुख को हटाओ, बात खत्म करो.
तो मैम बुद्धिज्म में फिर भगवान को नहीं माना जाता कि भगवान जैसी कोई चीज़ है?
नहीं.
तो फिर उनके फॉलोवर भगवान बुद्ध क्यों बोलते हैं या बुद्ध की पूजा क्यों करते हैं?
मैं बताऊँ, एक बहुत पुरानी, नहीं पुरानी नहीं, खैर हाल ही में आई थी एक मूवी थी ना, ओ माई गॉड, तो उसमें शायद वो मेल कैरेक्टर जो होते हैं ना, वो बोलते हैं ना कि लोगों से उनका भगवान मत छीनना, नहीं तो वही तुम्हें भगवान बना देंगे. वो वैसा ही है शायद. okay. कि जो भगवान बुद्ध हैं वो हमेशा एथिस्ट रहे. उन्होंने भगवान की, वेदों की क्रिटिसिज्म करी है, लेकिन अब उनको कहीं ना कहीं एज अ अवतार भी प्रोजेक्ट किया जाता है और साथ ही साथ उन्हीं को भगवान बना दिया है. क्योंकि बुद्ध के मरने के बाद वो जो 14 सवाल थे जिनका जवाब नहीं मिला था, अब उनके शिष्यों ने करा कि यार अब हम इसका जवाब देंगे. जिसका जवाब बुद्ध ने नहीं दिया किसी कारण से नहीं दिया, लेकिन अब जब शिष्यों ने उसका जवाब देने लगे तो 65 से भी ज़्यादा सबसेक्ट्स बन गए. मतलब अलग 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 छोटे छोटे बुद्धिज्म के, किसी ने कहा बुद्धिज्म ये है, किसी ने कहा बुद्धिज्म ये है, बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म इतना फैल गया, इतना अलग अलग तरीके का हो गया कि स्वतांत्रिका, अविभाषिका, योगाचार विज्ञानवाद, शून्यवाद, सब एकदम अलग है. आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत कॉमन है, बाकी सारी अलग अलग बातें करने लगे. और जो महायान है, अब अगर मैं इसका एक बताती हूँ, जैसे कि बुद्धिज्म के अंदर ये माना जाता है कि भगवान तो है नहीं, लेकिन अगर आप अपने अपने जीवन के कर्मों को आप ठीक कर लेते हैं तो उसके बाद आपको लिबरेशन मिल जाते हैं, निर्वाण मिल जाता है. और कहाँ जाते हो आप? जैसे कि अगर यहाँ पे एक मोमबत्ती रखी हुई है और मैं उस पर फूंक मार दूँ, तो अब वो मोमबत्ती की जो ज्योत थी वो कहाँ गई? स्वर्ग में?
पता नहीं.
नरक में? कहाँ गई वो?
पता नहीं, सोचा नहीं कभी इस तरह।
हाँ, तो बुद्ध वही कह रहे हैं, बुद्ध कह रहे हैं कि हमारा जीवन उस ज्योत की तरह है ना, एक बार जब हमने निर्वाण प्राप्त कर लिया तो हम स्वर्ग नर्क कहीं नहीं जाते, है ना, हम खत्म हो जाते हैं, एंड एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन जैसे ही आप किसी व्यक्ति को, आम व्यक्ति को ये बात बताओगे, उसके मन में तो डर आ जाएगा कि यार निर्वाण का मतलब तो मतलब खत्म। तो हमारा एक, हमारे अंदर की एक, बुद्ध के अनुसार एक लालसा है कि हम हमेशा एग्जिस्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि चाहे हमारा शरीर मर जाए लेकिन हमारी आत्मा अजर अमर रहनी चाहिए, क्योंकि वरना बड़ा 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 जिस व्यक्ति के अंदर, जिसे कहना चाहिए ना, जिसे एग्जिस्ट करने का मन कर रहा हो, उसके लिए वो वाला निर्वाण बड़ा अनपैलेटेबल सा है। तो उसी के चक्कर में बाद में जो महायान आया, ये हिनयान वाले सोचते हैं, हिनयान मतलब बुद्धिज्म का एक छोटा सा सेक्ट है, उसके बाद जो महायान आया, महायान वालों ने कहा इसको ठीक करना पड़ेगा अगर बुद्धिज्म को फैलाना है। तो फिर उन्होंने वही से ले आए कि हम मरने के बाद जो है, मतलब निर्वाण होने के बाद, केवल ने मोक्ष प्राप्त करने के बाद हम लोग एग्जिस्ट करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। तो उन्होंने जो कैवल्य का या अपने निर्वाण का जो पूरा डेफिनेशन दिया, उन्होंने कहा सबके कैवल्य की बात करते हैं। तो वहाँ पे आपने शायद सुना होगा बोधिसत्व, है ना, बोधिसत्व होते हैं, वज्रपाणी, अमिताभ जैसे, अच्छा ये सब बोधिसत्व हैं। तो अब बुद्धिज्म में क्या एक कॉन्सेप्ट उन्होंने, महायान वालों ने इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने कहा कि अगर मुझे तुम, अगर तुम्हारे बुरे कर्म है ना, कोई बात नहीं, तुम बोधिसत्वा से प्रे करो। बोधिसत्वा क्या करेंगे, बोधिसत्वा अपने तुम अपने कुछ अच्छे कर्म तुम्हें ट्रांसफर कर देंगे और फिर उन अच्छे कर्मों से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि, और ऐसा क्यों किया उन्होंने, बोधिसत्वा ने, क्योंकि उनके अंदर करुणा है और वो चाहते हैं कि सब इकट्ठे निर्वाण प्राप्त करें। इसलिए महायान, बड़ी शिप, सबको साथ लेके निर्वाण की तरफ चलना है। तो ये वाला जो पूरा मोड है, ये थोड़ा थोड़ा हमारा जो वैदिक अंडरस्टैंडिंग है निर्वाण की, आत्मा की,
मोक्ष की
उसकी तरफ चला जाता है।
बट अगर देखें तो जो सच में बुद्ध ने कहा था वो कृष्ण से अलग है, क्योंकि कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं, कभी जलती नहीं,
बिल्कुल ऑपोजिट है,
बिल्कुल ऑपोजिट है।
बुद्धिज्म और वेदांत ऑपोजिट, एक लेवल पे जाके कहीं ना कहीं उनका, अगर एक तरीके से, एक इंटरप्रिटेशन से देखें तो शून्यवाद और जो अद्वैत वेदांत है शंकराचार्य का, वो काफी मिलता जुलता है ना, उसको प्रचिन बुद्ध भी कहते हैं।
अभी हम उस पे आएंगे,
शंकराचार्य को।
सो आई थिंक बुद्ध की ये फिलॉसफी प्रैक्टिकल है, काफी साइंटिफिक है, बट ओवर द टाइम चीजें करप्ट हो ही जाती हैं, लोग अपने हिंदुइज्म में ही ये देखा जाता है कि हर एक शहर में, राज्य में लोग अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो उनकी सहूलियत है।
फिलॉसफी को या दर्शन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम अपने किसी भी रिलीजन के या किसी भी सोच विचार के दर्शन से दूर जाते हैं ना, तो हम उन चीज़ों को करते हैं जो एक्चुअली दर्शन का पार्ट है ही नहीं। जैसे कि मैं शायद जैनिज्म में ज़्यादा बेहतर समझने लगी जब मैंने फिलॉसफी पढ़ ली। उसके पहले मुझे उतनी श्रद्धा नहीं थी ना, मतलब खैर अब तो मुझे सभी में श्रद्धा है, लेकिन उस वक्त तक नहीं मुझे उतना समझ आती थी, लेकिन जब मैंने फिलॉसफी पढ़ी तो मुझे ज़्यादा श्रद्धा हुई।
हाँ, जैसे जैनिज्म की अगर बात करें तो जितना मुझे पता या जितना मैंने अपने जैन दोस्तों से सुना है कि सनसेट से पहले खाना खा लें तो जैनिज्म है। किसी भी कोई ऐसी सब्जी नहीं खाते जो जमीन में उगती है, ठीक है, ताकि कोई कीड़ा वगैरह मुंह में ना जाए, वो
मतलब पट्टी लगाते
हैं, मुंह में पट्टी लगाते हैं कि किसी कीट का भी नुकसान ना हो जाए उनकी वजह, बस इतना ही जैनिज्म मुझे आता है। ठीक है, ठीक है, बट एक्चुअल में जैनिज्म क्या है?
जैनिज्म जो हमारी फिलॉसफी है, बड़ी ही, ये भी बड़ी साइंटिफिक फिलॉसफी है, अब सोचने का अलग तरीका है। लेकिन अब हम आपको, अब आपको बुद्धिज्म भूलना पड़ेगा, अब बुद्धिज्म एंड हो गया, मतलब क्योंकि अब एक नया तरीका, एक नया वर्ल्ड व्यू अब हम क्रिएट करेंगे।
यही तो फिलॉसफी का मजा है कि सोचने का तरीका सब सही लग रहा है और सब में कुछ कमियां भी है।
सब यही तो मेरे, हमारी क्लास में, जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ फिलॉसफी, तो मैं बच्चों को यही बोलती हूँ कि बेटा हर फिलॉसफी लगेगी कि यही सही है, और मतलब मैं तो यही मानता हूँ। मैंने कहा जिस दिन चारवाक पढ़ोगे उस दिन चारवाक बन जाओगे, है ना, फिर जैसे ही बुद्धिज्म पढ़ोगे तुम कहोगे चारवाक तो गलत था यार, बुद्धिस्ट हूँ मैं तो एक्चुअली, और जिस दिन जैन पढ़ोगे जैन हो जाओगे, फिर वेदांत पढ़ोगे तो वेदांत हो जाओगे, मतलब एकदम आपको हर फिलॉसफी ऐसी लगेगी कि, क्योंकि ये बड़े, बहुत बड़े बड़े लोगों ने बनाई है और ये फिलॉसफीज एग्जिस्ट करी हैं हजारों साल तक, तो यानी इनके अंदर कुछ
सत्व तो है कि ये विचारधाराएं, ये सोच, ये तरीके, क्योंकि अगर कोई चीज़ बड़ी अनरीजनेबल होती है ना, तो एक या आगे की दूसरी तीसरी जनरेशन उसे डिस्कार्ड कर देती है,
वो हजारों साल तक नहीं टिकी।
हजारों साल
ऐसे मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी बोलता हूँ कि हजारों सालों से आज भी टिकी हुई है, आज भी पॉपुलर हो रही है, इसका मतलब इसमें सब्सटेंस है। अब आप किसी फिलोसफी की तरह हो सकता है, मान लो या ना मानो,
ना मानो या ना मानो, वो वाली स्थिति। मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली कि एस्ट्रोलॉजी इज वेरी क्लोज टू एस्ट्रोनॉमी, और जैसे एस्ट्रोनॉमी में रिसर्च अभी तक जारी है, उसी तरीके की एक साइंटिफिक रिसर्चेज होनी चाहिए। मतलब एस्ट्रोलॉजी इज एंशिएंट साइंस ऑफ इंडिया, उसमें भी उसी लेवल की रिसर्च होनी चाहिए, उसी लेवल का
इनपुट होना चाहिए।
हाँ, इनपुट होना चाहिए।
हो रहा है धीरे धीरे, मुझे लगता है अभी 40-50 साल और लगेंगे उस लेवल पे आने में। अच्छे टीचर्स आ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। चलिए हम एस्ट्रोलॉजी की बात फिर कभी करेंगे, आज जैनिज्म की बात।
सो जैनिज्म के अंदर, हमारा जैनिज्म मानता है कि दुनिया में, अगर सिंपल भाषा में समझें, अनंत चीज़ें हैं। मतलब ये टेबल भी असली है, ये कप भी असली है, और ये कितनी चीज़ें हैं, अनंत है ये। अनंत परमाणुओं से बना हुआ है ये। अनंत मतलब इनफाइनाइट, और हर परमाणु के इनफाइनाइट एस्पेक्ट्स हैं। मतलब उसके, उसको देखने के, उसको समझने के इनफाइनाइट तरीके हैं। जैसे कि अगर ये कप है ना, तो मैं जिस चीज़ को देख पा रही हूँ, आप उस चीज़ को नहीं देख पा रहे।
ओके,
है ना, वो वाला हिस्सा तो आपको नजर नहीं आ रहा।
नहीं।
और अगर सामने टीम बैठी है, तो उसको जो हिस्सा नजर आ रहा है, वो हम दोनों को नजर नहीं आ रहा, जो एस्पेक्ट नजर आ रहा है। और अगर हम तीनों आपस में बात करने लगे कि ये कप है कैसा, तो मैं वही बताऊंगी जो मुझे दिख रहा है।
ये वो नहीं है कि एक हाथी की किसी ने पैर पकड़ा है किसी,
बिल्कुल बिल्कुल,
वो बताइए, उस हाथी से समझाइए, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा।
हाथी से भी समझेंगे, पर अभी अनंत चीजों से हिसाब से समझ लेते हैं। हर चीज के, जैसे अगर एक कप भी है, तो इसके अनंत एस्पेक्ट्स हैं, इसके हजारों लाखों तरीके हैं इसे देखने के, और अलग अलग है ना। इसको स्पेस से भी देखा जा सकता है, यहाँ पे कितने एंगल्स हैं, उस सबसे अलग अलग नजर आएगा ये, है ना। रंग बदल दो चीजों का, यहाँ पे लाइट का रंग बदल दिया तो अलग नजर आ जाएगा ये। तो यानी कि इस पर्टिकुलर चीज के तो कितनी चीजें हुई, इनफाइनाइट, और हर चीज के कितने एस्पेक्ट्स हो गए, इनफाइनाइट। तो कोई भी व्यक्ति पूरी चीज के बारे में ज्ञान रख ही नहीं सकता, आम व्यक्ति। इसकी एक और, एक इसके पीछे का एक और हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि जैनिज्म के हिसाब से जो आत्मा है वो पूर्ण चेतन है, मतलब वो फुली कॉन्शियस है, और उसके पास अनंत चातुष्टय है। अनंत चातुष्टय मतलब उसके पास चार ऐसी पावर्स हैं जो अनंत हैं, जैसे उसके पास अनंत कॉन्शियसनेस है, अनंत इंटेलिजेंस है, अनंत पावर है। अनंत मतलब एकदम इनफाइनाइट पावर है, बहुत शक्ति है उसके अंदर। तो ये जो चार उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, अब ये क्वालिटीज़ थी बड़ी अच्छी, एकदम सही चल रहे थे, आत्मा ऊपर थी, बिल्कुल सही थी। फिर पता नहीं क्यों वो नीचे धरती पे आ गई। धरती पे क्यों आई, क्योंकि उसके अंदर चार तरीके के कषाय आ गए। कषाय मतलब काम, क्रोध, लोभ, माया।
ओके,
इतना वो आत्मा काम के अंदर पड़ गई, काम के अंदर सेंशुअल प्लेजर्स, ये खा लूँ, है ना, अरे चटपटा खाना है या मीठा खाना है, काम, क्रोध, है जो उसके मन मुताबिक नहीं हुआ उस पर वो व्यक्ति क्रोध करने लगता है कि मैंने कहा था कि ऐसे होगा और ऐसे नहीं हुआ, तो क्रोध। लोभ, मुझको ही मिल जाए,
डिजायर,
सारी टाइप डिजायर्स, प्रोफेशनल, इमोशनल, फिजिकल, एवरी टाइप ऑफ डिजायर कम्स अंडर
लोभ।
और माया, माया मतलब डिल्यूजन इन द सेंस कि हमें लगता है कि हम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, है ना, हमें लगता है हम ब्रह्मांड का सेंटर है, हमारे आसपास ब्रह्मांड घूम रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये एक जो डिल्यूजन हमारे मन में आ जाता है, तो जो व्यक्ति, जब आत्मा काम, क्रोध, लोभ, माया के इन्फ्लुएंस में आ जाती है, तो क्या होता है कि हम, ये ऐसा है जैसे कषाय, एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए जैसे कि शरीर पर अगर कोई तेल की मालिश कर दे और उसके बाद रेगिस्तान पर भेज दे, तो क्या होगा,
गर्मी लगेगी,
नहीं, रेगिस्तान में तो धूल
धूल चिपक जाएगी,
है ना। उसी तरीके से जब कषाय हमारे ऊपर लग गए, जब हमने कषाय हमारे मन में है, हमारी आत्मा में अगर कषाय है, तो वो तेल मालिश हो गई, और अब जब हम दुनिया में जाएंगे तो कर्मा पार्टिकल्स, जब कर्म के पार्टिकल्स हैं, वो हम पे चिपकते जाएंगे। यानी कि वो मानते हैं कि हमारा शरीर जो कि पुद्गल, कर्म पुद्गल बोलते हैं इसे, कि हमारा शरीर हमारे कर्मों के बेसिस पे बना है। मेरे अंदर अगर क्रोध था तो मैंने किसी का दिल दुखाया, वो कर्मा मेरे साथ चिपक गया, अब वो कर्मा मुझे भुगतना पड़ेगा, आज कल परसों कभी भी, लेकिन वो मुझे भुगतना पड़ेगा। यानी कि जो ये हमारा शरीर है ये हमें किस बेसिस पे मिला है? कर्मों के बेसिस पे। तो किसी का शरीर बड़ा सुंदर होता है, किसी का कम सुंदर होता है, किसी का डिजीज होता है, किसी के अंदर बीमारी ज़्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि कर्म पार्टिकल ऐसा है, कर्म पुद्गल उसका ऐसा है। यानी कि वो कषायों के बेसिस पे आपका कर्म पुद्गल, आपका शरीर, आपके आसपास की सिचुएशन डिसाइड हो रही है। जैसे कि अगर वो बोलते हैं लाभ अंतराय कर्म अंतराय, मतलब बहुत लंबी है, बहुत बहुत डिटेल्ड है, लेकिन अगर सिंपल टर्म्स में बताएं, एक होता है लाभ अंतराय। अंतराय के अंदर कि कौन, अगर एक व्यक्ति है तो उसने कोशिश करी, उसका तुरंत उसे सक्सेस मिल गई, क्योंकि उसके कर्मों में रुकावट नहीं थी। लेकिन सपोजिडली अगर किसी और व्यक्ति ने कभी किसी और व्यक्ति का करियर खराब कराए, है ना, तो अब ये जो व्यक्ति चाहे किसी भी जन्म में, एक से दूसरे तीसरे जन्म में, कभी भी जब होगा, जब ये व्यक्ति जाएगा, तो उस समय पे इसके करियर को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि वो जो कर्मा तब का इकट्ठा हुआ था वो उसे फल देगा।
तो जैनिज्म मानता है कि पाप पुण्य कर्मा फॉलोज यू, पुनर्जन्म में भी मानता है।
पुनर्जन्म में भी मानता
है। ओके, तो इसकी खास बात क्या है जैनिज्म की? तो हिंदुइज्म जैसा है
नहीं, अभी आएगा, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, खास बात अभी आ रही है। तो अब हमारा शरीर कर्म पुद्गल और ये सब इकट्ठा हो गया,
ठीक,
अब हम लोग आ रहे हैं इस दुनिया में और अपने कर्मों के हिसाब से सुख दुख लेते जा रहे हैं। अब इसके बाद वो कहते हैं कि अब आते हैं थ्योरी स्यादवाद की, वो जो हाथी वाली थ्योरी है।
ओके,
तो वो कहते हैं कि हम चीज़ों को जान नहीं सकते, है ना, जब हम एकदम प्योर आत्मा थे तब हम सब कुछ जानते थे, लेकिन जब हमारे अंदर कषाय आ गया, तो जैसे लाइट बल्ब के ऊपर अगर बहुत सारे ब्लैंकेट रख दिए जाएं, बहुत सारी चादर से ढक दिया जाए, तो रोशनी नहीं आएगी ना।
ओके,
तो उसी तरह से जो जितने कर्मों में दबा हुआ है उसे उतना ही कम ज्ञान है, और जिसे जितना कम ज्ञान है उसे उतने ज्यादा दुख है। तो अब वो कहते हैं कि अब हमारा काम क्या है, अब हमें ये चादरें हटानी है एक एक करके, एक एक करके, यानी कि हम धीरे धीरे करके इन कर्मों से, कर्म पुद्गल से अपने आप को फ्री करेंगे, अपने आप को एकदम प्योर बनाएंगे। तो फिर ताकि वो जो हम थे, जिसके पास सारी नॉलेज थी, जिसके पास सारी पावर थी, अनंत ज्ञान था, अनंत शक्ति थी, वहीं हम वापस से बन जाएं। अब इसका तरीका क्या है? उनमें से पहला तरीका जो कहते हैं, वो कहते हैं स्यादवाद को फॉलो करना। स्यादवाद मतलब कि हम चीज़ों को सत्य बोलें, है ना, सत्य। सत्य का मतलब कि हम जितना देख पा रहे हैं उतना बोलें। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि ये कप एकदम फिट है, मतलब कहीं से टूटा हुआ नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि मुझे सिर्फ इतना हिस्सा दिख रहा है। तो मुझे क्या बोलना चाहिए? मुझे बोलना चाहिए स्यात, ये कप ठीक है, मतलब मेरी दृष्टि से जितना मैं देख पा रही हूँ, मेरे काल, मतलब मेरे समय के अनुसार, मेरी जगह के अनुसार, लाइटिंग के अनुसार, मैं जितना देख पा रही हूँ उसके हिसाब से मुझे दिख रहा है कि ये कप ठीक है। तो अब मैंने उस व्यक्ति को डिनाई नहीं किया जो दूसरा देख रहा था, यानी कि वही हाथी वाला है कि ऐसा कहते, एक हाथी था, छः अंधे थे, तो किसी ने पैर पकड़ लिया तो उसने कहा ये तो पिलर है, किसी ने पूंछ पकड़ ली तो उसने कहा रस्सी है, किसी ने सूंड पकड़ ली तो उसने कहा ये तो सांप है, है ना, और किसी ने कान पकड़ लिए तो कहा पंखा है, किसी ने जो उसका जिसे बॉडी कहते हैं ना, पेट कहते हैं, उसको पकड़ा तो उसने कहा ये तो छत जैसा कुछ लग रहा है। अब छह वापस में लड़े जा रहे हैं, अब कौन सही है?
कोई नहीं,
सब अपनी अपनी दृष्टि से सही भी है।
हाथी हंस रहा होगा उन सब पे।
हाँ, उसी तरह से रियलिटी हम सब पे हंसती है जब हम लड़ते हैं इन सब छोटी चीजों पे।
सो इसमें जैनिज्म में है कि मेरा सच है, आपका सच हो सकता है अलग है, बट आई रिस्पेक्ट आपका भी।
रिस्पेक्ट, यस, एंड द मोमेंट यू रिस्पेक्ट इट यू बिकम मोर टॉलरेंट। तो लड़ाई का मामला बचेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने कभी ये कहा ही नहीं कि तुम गलत कह रहे हो, मैं कह रही हूँ मुझे जितना दिख रहा है मैं वो कह रही हूँ। उसके बाद इसी के अंदर फिर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये तीन रत्न आ जाते हैं, पंच महाव्रत आ जाते हैं, है ना, सत्य, अस्त्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह।
जैनिज्म में तीर्थंकर होते हैं, जैसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, और 24वें तीर्थंकर ज्यादा फेमस हुए महावीर भगवान। महावीर भगवान, तो ये तीर्थंकर कैसे बनते हैं? ये इनके भगवान हैं या फिर प्रॉफिट टाइप के हैं?
नहीं, सो जो भगवान में नहीं मानता है जैन धर्म।
ओके, ये भी भगवान में नहीं मानता। ये बुद्धिज्म के कालांतर में था क्या?
बिल्कुल। तो मैंने बताया ना कि हम तीन नास्तिक दर्शन मानते हैं और छह आस्तिक मानते हैं, और उसके अंदर से जो चार्वाक बुद्धिज्म जैनिज्म है वो भगवान, वेदों को भी नहीं मानते हैं और भगवान को भी नहीं मानते हैं।
ओके, तो ये जैनिज्म में भगवान, तो इनके तीर्थंकर होते हैं।
तीर्थंकर होते हैं, तो तीर्थंकर का कॉन्सेप्ट है कि जो आत्माएं सारे अपने कर्मों को खत्म करके, मतलब जो अपने अंदर के कषायों को खत्म करके, काम क्रोध लोभ माया जिनमें नहीं बचा, अपने अंदर के सारे एनिमीज को हरा के, आपने शब्द सुना होगा जिन, है ना, जैसे जैन लोग आपस में मिलते हैं तो करते हैं ना जय जिनेंद्र,
जय जिनेंद्र।
हाँ, तो मतलब वो जिन, जिन मतलब कि जिसने अपने सारे दुश्मनों को हरा दिया हो। कौन से दुश्मन? अंदर के दुश्मन, अंदर
काम क्रोध मोद लोभ पे विजय प्राप्त।
अरिहंत, नमो अरिहंतानम, अरि दुश्मन, हंत मतलब खत्म करना। तो जिसने अपने अंदर के सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया है, वो जब, जो वो आत्मा है जिसने सारे कर्म पुद्गल हटा दिए हैं, अब वो आत्मा चली जाती है सिद्धशिला में, और वहाँ पे वो जो सिद्धशिला है वहाँ पे जाके ये आत्मा हमेशा परफेक्ट स्टेट में एग्जिस्ट करती है। तो जो तीर्थंकर हैं वो व्यक्ति हैं जो आप जैसे, हम जैसे, मतलब इतने तो नहीं, हम तो बहुत पते थे, लेकिन वो अपने आप के अंदर, जैसे भगवान महावीर भी, सब नियरली जितने भी तीर्थंकर हैं ज़्यादातर क्षत्रिय और राजा रहे हैं, है ना, क्योंकि अच्छे कर्मों का एक बैलेंस रहा होगा तभी वो अच्छे घरों में भी पैदा हुए, और वो एक, क्योंकि ये इट्स नॉट अ रेस, इट इज़ अ मैराथन, जो ये कर्मों की पूरी व्याख्या है, या ये जो तो पूरा हमारा जो जैनिज्म का वो है, इट्स अ मैराथन, तो एक जन्म में नहीं आप अचीव करते हो, इट टेक्स मल्टीपल 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 बर्थ्स। बट जब ये जो राजा थे, जब इन्होंने सब कुछ त्याग दिया और अपने सोल को प्योर कर लिया, तो ये जो सोल थी, हमारे जैसे ही जो ह्यूमन बीइंग्स थे, यही जब परफेक्ट हो गए, वही अरिहंत बन गए और तीर्थंकर बन गए।
तो ये अरिहंत शब्द यहाँ से आया जैनिज्म में?
जी,
मैं तो कॉपी पे एक आती थी अरिहंत की बुक, उस पे देखता था। अरिहंत पब्लिकेशन है ना?
यस यस यस, जैन्स की है।
जैन हर जगह है, ठीक है। So, महावीर जैन के बारे में कुछ आप बताएं, महावीर जो तीर्थंकर थे हमारे, उनके बारे में, शायद उन्होंने इसको प्रोपोगेट किया है, उसको फैलाया जैनिज्म।
हाँ, उन्होंने इसको ना डॉक्यूमेंट करके, सिंप्लीफाई करके इसको लोगों तक पहुंचाने का काम किया। मतलब जैनिज्म में ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा के समय से जैनिज्म एज अ दर्शन एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये कोई अभी कोई नया चीज़ नहीं है। और अब ज़्यादातर जो हमारे भारतीय दर्शन है वो ये मानते हैं कि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन जो है साइक्लिकल है, मतलब ये दुनिया अभी जो चल रही है ये कोई पहली दुनिया नहीं है जो चल रही है, मतलब पहला यूनिवर्स नहीं है जो बना है, इससे पहले भी कई बार बन चुका, मिट चुका, ये भी मिटेगा तो अगला बनने के लिए तैयार है, तो ये चलता रहेगा, है ना। ये अलग 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 सब फिलोसफीज में कहीं ना कहीं माना है साइक्लिकल, इसे कहते हैं साइक्लिकल एवोल्यूशन एंड एवोल्यूशन।
मैम, ये बड़ा खतरनाक सब्जेक्ट है फिलोसफी, पता है क्यों? अब इतनी बातें आपकी सुनने के बाद किसी चीज़ में मज़ा ही नहीं आएगा, ना ज़्यादा खुशी होने का, ना ज़्यादा दुख करने का मन करेगा, तो जीवन नीरस नहीं हो जाएगा?
नहीं 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 नहीं, बल्कि ना बड़ा सॉर्टेड हो जाता है। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, शायद मैं आई एम इन लव विद द सब्जेक्ट फिलोसफी, तो मे बी मैं थोड़ी बायस्ड हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि फिलोसफी पढ़ के आपका जीवन बड़ा सॉर्टेड हो जाता है। यानी आपको है ना ये समझ में आ जाता है कि मुझे किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना और किस पे नहीं देना। मतलब जैसे छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा नहीं कर पाओगे आप, आप चाहो तो भी नहीं कर पाओगे। अगर आपने फिलोसफी पढ़ ली है डीपली, अगर आप फिलोसफी पढ़ चुके हैं और आपने महसूस करी है उसे, तो आप गुस्सा करना चाहो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लगेगा यार क्यों,
60 साल बाद तो रहना नहीं है।
हाँ, रहने क्या फायदा, मतलब मैं अपना शब्द भी वेस्ट करूं, खून भी जलाऊं, 100-250 ग्राम खून जल जाएगा, है ना, शरीर मेरा ही खराब होना है। वो मतलब यू नो द मोमेंट आपके अंदर वो थॉट प्रोसेस आया और आपने उसको अपने अंदर अच्छे से बैठा लिया, तो जो जनरली जो फिलोसफी के जो टीचर्स रहते हैं या जो फिलोसफी के स्टूडेंट्स रहते हैं, फिलॉसफी पढ़ते हैं, वो लोग अक्सर आप देखेंगे कि दे आर मोर कामर इन द सेंस कि ऐसा लगता है क्या ये छोड़ो ना.
तो तीन हमारे दर्शन हो गए, चार्वाक, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये है नास्तिक दर्शन.
हाँ.
ये वेदों में नहीं मानते.
हाँ.
ठीक है, इनके
और ईश्वर भी नहीं मानते.
ईश्वर नहीं मानते और इनके अपनी फिलॉसफी, अपने वे ऑफ लाइफ है. अब इसके बाद के जो दर्शन क्या है,
इसके बाद हमारे दर्शन आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं षड दर्शन. षड दर्शन यानी कि छह ऐसे दर्शन हैं जो वेदास को मानते हैं, जैसे कि सांख्य और योग. सांख्य योग बहुत सिमिलर टाइप के फिलॉसफीज हैं. सांख्य योग क्या मानते हैं, अगर सिंपल तरीके से समझा जाए, वो मानते हैं कि एक प्रकृति होती है और एक पुरुष, है ना. प्रकृति दुनिया में हम जितनी चीज़ें देख रहे हैं, जितना सामान देख रहे हैं, टेबल, चेयर, पहाड़, नदी, हवा, आसमान, जो भी चीज़ देख रहे हैं, वो सब क्या है, सब जड़ है, जड़ तत्व है. जड़ यानी कि मटीरियल, मैटर.
मैटर
और ये जो मैटर है इसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं होगी, ये चेतन नहीं है, है ना. जैसे कि मैं इस टेबल को कितना भी मारूं, ये मुझे कुछ नहीं कहेगी. क्यों नहीं कहेगी, क्योंकि ये जड़ है. लेकिन प्रकृति की जितनी चीज़ें हैं उन हर सब चीज़ों में तीन तरीके के गुण मिलेंगे, सत्व, रजस और तमस. आपने सुना होगा तामसिक खाना है, तो खाना भी तामसिक होता है ना. लोग भी सात्विक, राजसिक और तामसिक होते हैं. जैसे कोई व्यक्ति आया, है ना, उससे आप मिले और आपको मिलते ही ना बड़ा डिप्रेसिंग हो गए. जैसे कई टॉक्सिक लोग होते हैं ना, टॉक्सिक ऐसे फ्रेंड्स हो जाते हैं या रिलेटिव्स होते हैं टॉक्सिक के. घर में एक रिलेटिव आया, आप अच्छा भला पढ़ाई कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे अपने जीवन में, आके उसने चार सवाल पर, क्या कर रहे हो, अच्छा तुम्हारा पड़ोसी का बच्चा तो ये कर रहा है, या जो भी
होता नहीं इस यूपीएससी में लोगों का कोई फायदा नहीं करके.
हाँ हाँ, यूपीएससी में होता नहीं, और यूपीएससी किसी भी लाइन में उन्होंने. अब जिस भी व्यक्ति से आप मिले और उसने आपका ना ऑप्टिमिज्म चूस लिया और आप डिप्रेसिव हो गए, तो यानी वो व्यक्ति क्या था, तामसिक
था.
उसी तरीके से राजसिक लोग होते हैं. राजसिक मतलब जिनसे आप मिलते हैं और वो आपको मोटिवेट कर देते हैं एकदम, है ना, एकदम आपके अंदर एकदम एनर्जी ले आते हैं. जैसे कि आप उनसे मिले, उन्होंने कहा क्या क्या
कर सकते हो,
तुम कर सकते
हो, कर सकते हो,
यू कैन डू इट. तो वो राजसिक लोग हैं, है ना, वो आपके अंदर एनर्जी भरते हैं. सात्विक है, सात्विक जिस व्यक्ति से मिलके आपको शांति आ जाए, बस मतलब आपको बस एक शांति की अनुभूति होती है ना, बस कि हाँ ठीक है, वट एवर इट इज आई हैव अचीव्ड, मतलब अ काइंड ऑफ अ वेरी गुड फीलिंग, तो वो सात्विक है. उसी तरह खाना भी सात्विक, राजसिक, तामसिक होता है. जैसे प्याज लहसुन को तामसिक कहा जाता है, नॉनवेज को तामसिक कहा जाता है, क्योंकि वो आपके अंदर नेगेटिव चीज़ों को थोड़ा बढ़ा देते हैं. जैसे गुस्सा ज़्यादा आएगा, इरिटेशन, एग्रेशन, ये सब ज़्यादा हो जाएगा. राजसिक खाना क्या होता है, घी तेल वाला खाना, है ना, खाओगे तो एकदम मतलब आपको, है ना, राजसिक राजा टाइप का खाना,
छप्पन व्यंजन.
सात्विक खाना वही अपना दाल, घी, खिचड़ी, है ना. आप खिचड़ी खाओगे तो आपको कभी पेट खराब नहीं होगा, कोई गैस नहीं बनेगी, कोई मतलब आपको कुछ एकदम शांति की अनुभूति हो रही है. तो इसी तरह हर चीज में सत्व, रजस, तमस मिलेगा. और हमारा शरीर भी प्रकृति का बना हुआ है, हमारे शरीर में भी क्या है, सत्व, रजस, तमस सब में बना हुआ है. और लेकिन एक चीज़ अलग है कि हम ह्यूमंस में, हम जो हम मनुष्य हैं, हम में पुरुष की परछाई है. जो ये पुरुष है ये हमारे अंदर कॉन्शियसनेस या चेतना डालते हैं, है ना. हमारे अंदर चेतना का कारण पुरुष है, तो यानी कि चेतना पुरुष की देवी है, बाकी हमारा शरीर प्रकृति का है. लेकिन हम जब इस दुनिया में आते हैं, कई तरीके के दुख हैं, तीन प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, मतलब लंबी सी कहानियां हैं, लेकिन अलग अलग तरीके के दुख हैं. लेकिन हम दुखी क्यों हैं, क्योंकि हम इस शरीर को अपना मान बैठे हैं. यानी कि हम जो सोचते हैं, अपने विचारों को अच्छा अपना मान बैठे हैं, हम अपनी इंद्रियों को अपना मान बैठे हैं, अपने आसपास के लोगों को अपना मान बैठे हैं. जैसे कि दुख क्यों होता है कि अरे ये मेरा सामान टूट गया या मेरे शरीर पे चोट लग गई, है ना, तो दुख इमिजिएटली आ जाएगा. क्योंकि दुख क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा था, मेरा, जहाँ मैं, वो जो मैं है. अब प्रॉब्लम क्या है कि हमने सही से, अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी, हमने सही से आइडेंटिफाई नहीं किया कि मैं क्या था, क्या ये शरीर था, क्या ये इंद्रियां थी जो मैं सुन रहा हूँ, सोच रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मतलब जो स्वाद आ रहा है क्या वो मैं, स्वाद जो ले रहा है क्या वो मैं हूँ, या असलियत में मैं कौन हूँ। तो जब सांख्य कहते हैं कि जब हम मेडिटेट करते हैं, जब हम अंदर की तरफ जाते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि ये प्रकृति हम नहीं है, हम जड़ तो हो ही नहीं सकते ना, तो ये प्रकृति मैं नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं वो चेतन तत्व हूँ जो पुरुष है। और जैसे ही आपको अपनी असली आइडेंटिटी पता चलती है, आपको कैवल्य मिल जाता है।
तो कैवल्य,
हाँ, मोक्ष मिल जाता है। सब एक ही शब्द है, एक ही मतलब है सबका, कैवल्य, निर्वाण, मोक्ष, लिबरेशन, सबका एक ही मतलब है। अलग अलग नाम सबने चुन लिए, किसी ने अपवर्ग चुन लिया, किसी ने कुछ और चुन लिया, लेकिन सबका मतलब लगभग एक ही है।
तो ये सांख्य और योग हो गया।
हाँ, सांख्य और योग, योग अब उसके लिए अष्टांगिक योग दे देता है। तो योग तो आपने सुना ही होगा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धार,
जीवन जीने का तरीका।
हाँ, हाँ, एग्जैक्टली। तो वो जो आठ स्टेप्स हैं, जैसे बुद्धा ने आठ स्टेप्स दिए थे अपने, उसी तरह योग ने अपने आठ स्टेप्स दिए हैं कि भाई यम नियम आसन का प्राणायाम तो सब कर, बहुत लोगों ने सुना होगा ना, तो ये इस तरीके से सबको करो, अंत में समाधि, और समाधि की स्टेज पे आपको अपनी असली आइडेंटिटी पता चल जाती है।
तो क्या इसको लेकर कोई फाइट है कि द एंड क्या है, मैटर है कि प्रकृति, नेचर है, जड़ है कि क्या बोलते हैं उसे, प्रकृति है।
एंड मतलब
एंड गोल क्या है फिलोसफी का, क्या ये दोनों को मानता है कि एंड में प्रकृति बचेगी या जड़ बचेगा?
नहीं, वो ये मानता है कि दोनों दोनों रहेंगे,
दोनों रहेंगे,
दोनों रहेंगे इक्वल,
किसी कोई तीसरा नहीं आता बीच में।
नहीं, तीसरा नहीं है, कोई तीसरा नहीं है, प्रकृति और पुरुष है। तो प्रकृति पुरुष जब साथ आएंगे तो जगत बन जाएगा।
इसके आगे की जो मैम फिलोसफीज है उनमें क्या डिफरेंस है?
बहुत सारी फिलोसफीज हैं, जैसे सांख्य योग हो गया, फिर एक न्याय वैशेषिक दर्शन है, वो अपने आप में बहुत यूनिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। जैसे अभी तक हम लोगों ने ना हमेशा ये सुना है कि एटम के बारे में किसने बताया दुनिया में, कि दुनिया एटम से बनी है। जनरली वेस्टर्न लोग जॉन डाल्टन का नाम लेते हैं, उसको एक एक फादर फिगर के तौर पर देखते हैं। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं, शायद मैं हमेशा हमेशा बोलती भी हूँ ये एग्जाम्पल, मैंने कई जगह भी देती हूँ, कि ये इसलिए क्योंकि हमने अपनी धरोहर को बहुत अच्छे से पहचाना नहीं है। जैसे वैशेषिका थ्योरी, न्याय वैशेषिका थ्योरी 5वीं 6वीं शताब्दी के दौरान ही ये बात बता चुकी थी कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो छोटे छोटे परमाणुओं से बना होता है।
महर्षि कणाद थे, उन्होंने बताया।
यस, महर्षि कणाद, यस। तो कनभुक भी बोलते हैं, उल्का भी बोलते हैं, ये वैशेषिका के हमारे लीडर है ना, प्रोपोनेंट है। तो बेसिकली हम कब बता चुके थे, और उन्होंने पता है कितनी डिटेल में बताया, ऐसा नहीं उन्होंने सिर्फ ये बोल दिया कि भाई परमाणु जो है उससे धरती बनी है या ये दुनिया बनी है, उन्होंने उसका डिटेल भी बताया है। उन्होंने कहा है कि ये जो परमाणु है इसको हम आँख से नहीं देख सकते, इसके बाद ये परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ के डायार्ड बनता है ना, द्विनानुक बनता है, फिर त्रिनानुक बनता है, मतलब तीन जुड़ जाते हैं तो ट्रायार्ड बन जाता है। उसके बाद एक सब एक पर्टिकुलर शेप लेने के बाद ही हमें आँख से समझ में आता है या हम उसे जान पाएंगे। तो वो कितना छोटा है, उसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब, और इतनी डिटेल में उन्होंने बताया है कि अगर साइंटिफिक व्यक्ति पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि कितनी डिटेल में उन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा। और आप ये देखिए, उस वक्त पे ना टेलीस्कोप थी ना माइक्रोस्कोप थी, तो एस्ट्रोनॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, जो ये सारी एटम वैटम की बातें हो रही हैं, ये कैसे आई होंगी उनके पास? तो कुछ तो ज्ञान है जो उस वक्त पे रहा होगा ना, मतलब स्पेकुलेटिव मान लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा ना, जिससे उन्होंने इस इन्फ्लुएंस पे या इस नॉलेज पे वो लोग पहुँचे। तो वैशेषिका दर्शन और न्याय दर्शन अपने आप में बहुत डिटेल्ड है। जैसे न्याय दर्शन अपने आप में हमें आर्ग्यूमेंटेशन सिखाता है कि कैसे आर्ग्यूमेंट करना चाहिए, तो इसे स्कूल ऑफ लॉजिक भी कहा जाता है। तो हमारे भारतीय दर्शन में लॉजिकली सोचने का तरीका एक बहुत अच्छे तरीके से न्याय ने बताया है। और वैशेषिक ने, तो वैशेषिक का अगर हम सिंपल तरीके से समझें, उसने माना कि धरती चार तरीके के एटम्स हैं, अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर, है ना, ये चारों हमारे एटम्स हैं, ये अलग अलग तरीके के एटम्स हैं, ये सारे एटम्स मिलेंगे, अनंत सोल्स हैं, अनंत आत्माएं हैं, अनंत मन है, फिर एक स्पेस है जिसे हम जगह बोलते हैं, जैसे स्पेस, फिर एक टाइम है और एक ईथर है। ये नौ चीज़ें हैं जो दुनिया में हैं, और फिर ये नौ चीज़ों को भगवान जो आएंगे भगवान इन 9 चीजों को ऐसे बोलेंगे आपस में कि भाई अच्छा ये एटम्स हैं, अर्थ के एटम्स हैं, थोड़ा हवा का एटम मिलो, पानी के एटम मिलो, पहाड़ बन जाओ, तो पहाड़ बन गया है ना। वाटर एटम्स मिले, नदी बन गई। तो उसी तरह हमारा शरीर बन गया और हमारे अंदर वो जो मन और आत्मा अलग अलग पड़ी थी ना, मन भी बहुत सारी मन और बड़े सारे आत्मा थे, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और जैसे ही हमारे साथ जुड़े जैसे ही रोबोट में सिम और सॉफ्टवेयर डाला, रोबोट चलने लगा, हम चलने लगे, हमारे अंदर चेतना आ गई। और अब हम किस तरीके से हमें दुनिया में काम करेंगे, कर्मों के हिसाब से। कुछ कर्म हम लेकर आए हैं, कुछ हम कर रहे हैं। तो जो लेकर आए हैं वो हमारी एग्जिस्टिंग कंडीशन है कि हम गरीब हैं, अमीर हैं, कैसे हैं हम, हमारा सिचुएशन कैसे, फैमिली लविंग है, नॉन लविंग है, किस तरीके के दोस्त मिल रहे हैं, भारत में पैदा हो रहे हैं, अफगानिस्तान में पैदा हो रहे हैं, यूएस में पैदा हो रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये हमारे कर्मों का एग्जिस्ट है। और अब हम जो कर रहे हैं वो डिटरमिन करेगा आगे क्या होगा। तो ये न्याय वैशेषिका हो गया। वो भी ऐसे ही कहते हैं कि जब हमें अपनी असली आइडेंटिटी पता चल जाएगी तो हमें निर्वाण मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं हमारे मीमांसा वेदांत। वेदांत बहुत बड़ा है ना, मीमांसा थोड़ा छोटा है उस हिसाब से। तो मीमांसा इज़ मोर अबाउट रिचुअल्स, रिचुअल्स जैसे कि ये कर्मकांड है ना, सुबह उठना चाहिए, ये करना, मतलब नहा के पूजा करनी चाहिए, ये अलग अलग कर्मकांड करने चाहिए, ये यज्ञ करेंगे तो ये मिलेगा, वाजपेयी यज्ञ करेंगे तो ये मिलेगा। तो अलग अलग यज्ञ हैं, अलग अलग चीज़ों
में मीमांसा में यज्ञ,
ये मीमांसा यज्ञ पूजा कर्म कांड ये सारी चीज़ें मीमांसा में समझ में आती हैं। क्योंकि वेदों में दो हिस्से हैं, वेदों में एक हिस्सा कर्म कांड की तरफ जाता है, वही मीमांसा बन गया।
कर्म कांड मतलब रिचुअल्स,
रिचुअल्स
ओके। और फिर ये वेदांत में द्वैत और अद्वैत।
हाँ, वेदांत बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है ना। तो वेदांत के अंदर कई वो हुए हैं, जैसे कि सबसे जो प्रोपोनेंट सबसे बड़े हैं वो है शंकराचार्य।
ओके,
अद्वैत वेदांत,
अद्वैत वेदांत। ये द्वैत और अद्वैत में थोड़ा फर्क समझा दीजिए।
द्वैत और अद्वैत, देखिए अद्वैत मतलब सिर्फ एक,
ओके,
द्वैत मतलब दो। अब वैसे द्वैतवाद के अंदर भी कई सारे हैं, विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत विशिष्ट द्वैत एंड विशेष अद्वैत और द्वैत, बहुत सारे अलग 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 हैं, है ना। तो अगर हम समझें तो अद्वैतवाद कहता है कि सारी दुनिया सिर्फ एक ही चीज से बनी है, और वो एक चीज क्या है, ब्रह्म, ब्रह्मन। हमारे अंदर हर चीज, ये टेबल भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, सब कुछ ब्रह्म है।
तो मतलब ईश्वर और राक्षस नहीं है,
नहीं,
एक ही है, ब्रह्म,
सिर्फ ब्रह्म है, सिर्फ ब्रह्म है।
वही अच्छा भी है, वही बुरा भी है,
वही अच्छा भी है, वही बुरा भी है, सब कुछ वही है। तो हर चीज सिर्फ एक है, वो है ब्रह्म। मतलब वेदांत का अद्वैत वेदांत ऐसे सिंपली समझ नहीं आएगा, उसके लिए पूरा एक बहुत बड़ा सेशन, मतलब वो तो बहुत बहुत ही अच्छी फिलॉसफी है।
अद्वैत वेदांत को शंकराचार्य ने फैलाया।
हाँ,
तो आज जैसे हम देखते हैं चार शंकराचार्य होते हैं भारत में,
वो थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए कि वो उनके फिलोसफिकल वंशज भी कह सकते हैं थोड़ा बहुत, और बाकी वो मंदिर से ज्यादा एसोसिएट हो गए।
ओके,
है ना। जैसे अगर हम समझे तो शंकराचार्य कहते हैं कि तीन लेवल्स की रियलिटी है, तीन लेवल की रियलिटी। जैसे कि आप सपना देख रहे थे, है ना, सपने में आपने देखा शेर आया, आप डर गए, आपके पसीने पसीने आ रहे थे, आपने देखा टेबल पे पानी है, आपने पानी पिया, और पानी पिया तो प्यास बुझ गई, आप थोड़ा सा शांति की महसूस। लेकिन ये सब कहाँ हो रहा है, सपने में। तो क्या ये असली है, आपको कैसे पता चला असली नहीं है? जब सपने में थे तब क्या लग रहा था,
तब तो असली लग रहा था,
तब असली लग रहा था। फिर आप उठ गए, फिर जैसे ही आप उठे आपको क्या लगा, ये तो सपना था,
सपना था।
लेकिन उठ के तो पता चला ना ये सपना था। और जब आप उठे तब आपने ये रियलिटी देखी, तब आपने देखा कितना अच्छा टेबल, पानी, चाय, है ना। आपने कहा अच्छा सपना तो बड़ा खराब सा था, ये असली है, अब हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो शंकराचार्य का कहना है कि ये भी तब तक असली है जब तक कि तीसरे लेवल की रियलिटी आपके लिए नहीं खुल जाएगी।
तो ये दो रियलिटी तो ये हो गई।
हाँ,
तीसरी क्या है?
तीसरी हमारी परमार्थिक रियलिटी है, परमार्थिक सत्य, है ना। तो जैसे कि प्रतिभाषिक और हमारे व्यवहारिक, ये हमारा व्यवहारिक है। प्रतिभाषिक जैसे हमारा सपना था, ये व्यवहारिक, है ना, जिसमें हम व्यवहार कर रहे हैं, और एक परमार्थिक रियलिटी है। तो जिस व्यक्ति को वो परमार्थिक रियलिटी दिख जाती है, समझ आ जाती है, उसके लिए ये व्यवहारिक रियलिटी सपने जैसी हो जाती है, उसे समझ में आता है ये तो असली नहीं है। तो वो कहते हैं ना, भ्रम सत्यम जगत मिथ्या, तो भ्रम ही एक सत्य है और जगत मिथ्या है, वहां से ये पूरा वेदांत का वो निकलता है।
ये अद्वैत वेदांत है,
अद्वैत वेदांत,
इसे शंकराचार्य मानते हैं,
शंकराचार्य मानते हैं।
ओके, अद्वैत वेदांत भी काफी वो लॉजिकली लग रहा है, ये
बहुत लॉजिकल है, और शंकराचार्य इज वन ऑफ द फिलोसोफर, वेरी इम्प्रेसिव। मतलब जब हम पढ़ाती हूँ मैं क्लास में, तो मैं मतलब अक्सर बहुत सारे बच्चे अंत में क्लासेस ख़त्म होने के बाद मुझे जो रियलाइज़ होता है कि शायद मैं शंकराचार्य या तो ठीक पढ़ा लेती हूँ थोड़ा बाकियों से, या मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे शंकराइट बन जाते हैं।
कुछ और बताना चाहोगे आप इस अद्वैत वेदांत के बारे में?
बहुत बहुत यूनिक फिलॉसफी, मतलब इट्स लाइक बियॉन्ड पार। जैसे कि अद्वैत वेदांत साइंस के भी बड़ा क्लोज है। अगर हम साइंस को समझना चाहें तो अद्वैत वेदांत बड़ी अच्छे से फिट होता है उसके अंदर। जैसे कि सारी दुनिया असलियत में बनी किस चीज़ से है, जैसे कि लोग क्या कहते हैं कि एटम्स से बनी है ना, लेकिन एटम तो टूट जाता है, एटम तोड़ेंगे तो अंदर क्या आएगा,
इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, है ना। अब और तोड़ो, इलेक्ट्रॉन्स को भी तोड़ सकते हैं, अब तो हम प्रोटॉन्स को भी तोड़ सकते हैं,
ब्रह्म पार्टिकल आ जाएगा,
है
गॉड पार्टिकल,
वो तो अलग ही है, लेकिन उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि क्वार्क्स आ जाते हैं।
ओके,
फिर क्वार्क्स को तोड़ते हैं तो लेप्टॉन्स आ जाते हैं, है ना। अब नाउ दे आर सेइंग, साइंस इज सेइंग कि लेप्टॉन्स भी तीन तरीके के होते हैं,
और छोटे में चले गए।
अब आप तोड़ते जाओगे, ऐसा कई साइंटिस्ट का मानना है कि जब आप अंत तक तोड़ोगे तो अंत में जाके शायद सिर्फ एनर्जी बचे, है ना। तो यानी कि आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया था, E=mc², एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट इंटू स्क्वायर, यानी कि एनर्जी और मास में ट्रांसलेशन का रिलेशन है, यानी कि एनर्जी से मास बनाया जा सकता है और मास से एनर्जी बनाई जा सकती है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या करते हैं, वो एटम को तोड़ते हैं, उससे थोड़ा सा मास को बर्न करते हैं और इतनी सारी एनर्जी निकाल लेते हैं। तो यानी एनर्जी और मास आपस में
इंटरलिंक्ड
है, इंटरचेंजेबल है। लेकिन अगर हम देखें तो असलियत में तो सब कुछ एनर्जी हो गया ना। अगर ये टेबल है, क्या है, ये एक एनर्जी का
स्वरूप है
हम सब, तो अंत में बचेगा क्या,
एनर्जी।
शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक ही चीज से बना है, सब कुछ ये डिफरेंस हमें लग रहा है कि ये टेबल अलग अलग है, मैं अलग हूँ, आप अलग हो, ये हमें लग रहा है, लेकिन परमार्थिक लेवल पे सब एक है। और वो क्या है, एक
एनर्जी,
या उसी एनर्जी तो साइंस वाले बोलेंगे और शंकराचार्य कहेंगे
ब्रह्म। जैसे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट के, ये अद्वैत वेदांत में ही बताए गए हैं या यहाँ से इंस्पायर्ड है?
मतलब दे कैन बी एक्सप्लेन्ड, है ना। हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि शंकराचार्य या किसी ने क्वांटम इंटेंगलमेंट की बात करी है,
ओके,
है ना, डायरेक्टली नहीं करी है, लेकिन उनकी जब हम थ्योरीज पढ़ते हैं और जब हम उनका इम्पोर्ट समझते हैं, क्योंकि देखिए बहुत अंतर भी है, वो संस्कृत में लिखी गई हैं, उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल उस समय पे किया वो वाले शब्द आज हम नहीं समझते। जैसे बहुत सारे संस्कृत के शब्दों का भी मतलब अब बदल गया है,
ओके,
उनका उस वक्त जो मतलब था और आज जो मतलब है वो बहुत अंतर है। तो हमें वो जो कहते हैं ना कि एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, और उस पर हमने काम भी नहीं किया है। ये भी एक हमारी एक अक्षमता है कि हम लोगों ने हमेशा साइंस पढ़ने पे या बाकी सारी चीज़ें पढ़ने पे तो बहुत ध्यान दिया और उस पर बहुत रिसर्च भी हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उस पर कम हुई है, उसकी डीकोडिंग में, उसकी उसको ऐसी तरीके से लेकर आना है कि समझा जा सके आसानी से। हम एक्चुअली अभी भी हम लोग हैं ना बहुत सुनते हैं कि हमारे ऋषियों ने ज़ीरो दिया, हमारे ऋषियों ने ये बताया कि धरती सूर्य के चक्कर काटती है, सूर्य इधर से धरती के चक्कर नहीं काटता, हेलियोसेंट्रिसिज्म कहते हैं इसे, है ना। जैसे कॉपरनिकस करके एक आदमी है वेस्टर्न वर्ल्ड में. आपको पता है उसे कितना बड़ा स्थान दे रखा है वेस्टर्न वर्ल्ड में. उसको कहा जाता है फादर ऑफ कॉपरनिकन रेवोल्यूशन. मतलब उन्होंने रेवोल्यूशन ले आए, उन्होंने पूरा सोचने समझने का तरीका बदल दिया वेस्ट में. बस इतनी सी बात बता के, इतनी सी तो नहीं है, खैर बात तो बड़ी है लेकिन ये बात बता के कि धरती सूर्य के चक्कर काटती है और सूर्य धरती के चक्कर नहीं काटता.
उन्होंने पीआर अच्छा किया अपना, हम इंडियंस कर नहीं पाए
हाँ
अपने ऋषियों का.
एग्जैक्टली. और हमारे यहाँ पे वराह मिहिरा करके एक ऋषि रहे हैं, उन्होंने ये बात 5वीं 6वीं सेंचुरी में बता दी. और वहाँ पे कॉपरनिकस ने आई थिंक 13वीं 14वीं या 14वीं 15वीं सेंचुरी के अंदर ये बात कही है. अब सोच रहे कितना अंतर है दोनों सेंचुरीज में,
800-900 साल.
हाँ हाँ, हम कितने सालों पहले वो बात कह चुके हैं, समझ चुके हैं बात, मतलब उस पर बात चालू कर दी थी हम लोगों ने. लेकिन वो मतलब अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड.
ये तो हो गई जैसे फिलॉसफी. तो मेरा जितना अभी तक मैं समझा हूँ कि फिलॉसफी सिर्फ वे ऑफ लाइफ नहीं है, ये साइंस की बातें भी करती है, ये मैटर प्रकृति यूनिवर्स सब सारी बातें करती है और जीने का तरीका भी कई सारी फिलॉसफीज बताते हैं. ये इंडियन हो गई. ऐसे हमारे फॉरेनर फिलॉसफी भी होंगे,
वेस्टर्न भी है, वो भी पढ़ाते हैं हम.
जैसे कांत हैं, बड़े फेमस हैं वेस्टर्न फिलॉसफी में, उनकी क्या फिलॉसफी है?
कांट की फिलॉसफी एक्चुअली,
एक सेकंड में, कांट में ये भी कहना चाहूं, कांट शायद मैंने कहानी सुनी थी कि वो एक ही कमरे में रहते थे. हाँ. वो ज्यादा दूर जाते भी नहीं थे. उतने
वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे.
हाँ.
और बहुत पंक्चुअल किस्म के व्यक्ति थे. कांट के बारे में कहा जाता है, उनकी एक बड़ी फेमस कहानी है कि लोग अपनी घड़ी का समय मिलाया करते थे कांट के कॉलेज आने के समय से. और अगर किसी दिन मैच नहीं होता था ना, जैसे कांट 9 बजे पहुंचे हैं और घड़ी कह रही है 9:03, तो घड़ी ठीक करते थे लोग. उन्हें था कि कांट लेट नहीं हो सकते. और कांट की तो बड़ी सारी कहानियाँ भी हैं और उनकी फिलॉसफी भी बहुत ही अलग, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है. लेकिन कांट हम लोग ऐसे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि एक तो वो थोड़ा वेस्टर्न वर्ल्ड का है, तो थोड़ा हमें उसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा. तो उसके लिए रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये सब का बैकग्राउंड होता है, फिर वो कांट समझ में आते हैं वेस्टर्न के अंदर. लेकिन कांट की कहानियाँ बड़ी इंटरेस्टिंग है. जैसे कि एक बार कांट से ना एक मतलब कांट ना बड़े लॉजिकल व्यक्ति थे. वो है ना हर चीज़ के अंदर प्रोज कॉन्स ढूंढना और लॉजिक ढूंढना ये सब बड़ा करते थे. तो एक लड़की ने उन्हें प्रपोज किया. एक लड़की ने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ. तो कांट ने कहा मैं आपको बताता हूँ, है ना, आई विल थिंक एंड लेट यू नो. अब कांट ने अपना खूब एनालिसिस किया, प्रोज लिखे, कॉन्स लिखे, कि क्या फ़ायदा होगा शादी करूँगा तो शादी क्यों करनी चाहिए और क्या नुकसान होगा शादी क्यों नहीं करनी चाहिए. तो खूब उन्होंने प्रोज कॉन्स लिखे और फिर भी वो डिसाइड नहीं कर पाए. और ऐसा कहा जाता है कि फिर लड़की ने कहीं और शादी कर ली तो वो अंत में उन्होंने कहा यार ये तो चॉइस तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि फ़ायदा और नुकसान आप गिन के, उनके दोस्त से उन्होंने बात करी तो दोस्त ने कहा कि चूज़ करना पड़ेगा, इसमें फ़ायदा नुकसान नहीं है. तो वहीं से कहीं ना कहीं उनका एक आइडिया आता है जो बड़ा फेमस भी है. कांट कहते हैं आई हैड टू डिस्ट्रॉय माई रीजन टू मेक रूम फॉर फेथ.
ओह, फेथ, रूम फॉर फेथ, वाओ.
मतलब मुझे अपने रीजन को ख़त्म करना पड़ा ताकि मैं अपने लिए फेथ के लिए जगह बना सकूं. तो
इट इज लाइक लॉजिक किल्स मैजिक.
यस यस. और इसी को जब हम लोग भारतीय दर्शन में समझते हैं तो कई लोग ऐसे बोलते हैं ना कि ईश्वर जानने की चीज़ नहीं है,
मानने की चीज़ है.
तो वो जो जानना और मानने वाला अंतर है ना, वही वो कांट वाला एक फिलॉसफी है.
कई चीज हम रीजन नहीं दे सकते कई चीज़ों को, बस करना है तो
करना है.
नाइस. और कुछ कोई कहानी कांट की?
नहीं तो फिलॉसफी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसपे घंटों बात करी जा सकती है. और वेस्टर्न फिलॉसफी तो मतलब खैर मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, तो मैं तो इसको कितनी ही देर आपको बता सकती हूँ. लेकिन आप मुझे बताएं कि आपको एस्ट्रोलॉजी के अंदर कैसे इंटरेस्ट आया?
ज्योतिष में मैम कभी भी कोई भारत में कोई भी चुनकर नहीं आता है सब्जेक्ट में. तो ज्योतिष की फिलॉसफी मैं मानता हूँ ये कि ये सब्जेक्ट चुनता है अपने बंदों को, ठीक है, कि तुम मुझे सीखोगे. क्योंकि कई लोग, मैं जैसे अखंड गुरुकुल में मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ, सालों से पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे, कुछ लोग आते हैं बड़े जोश के साथ, जो ठंडा होता चले जाते हैं, अंत तक बस गिने चुने लोग टिकते हैं जिनको सच में एस्ट्रोलॉजी से प्यार हो जाता है। जैसे आज आपने कितनी सारी फिलॉसफी बताई, आई एम श्योर जो ये पॉडकास्ट देखेगा कोई ना कोई बुक पढ़ने लग जाएगा आज फिलॉसफी की। तो ऐसे ही मेरे साथ भी होता, मेरे फादर एस्ट्रोलॉजी करते थे तो एक बैकग्राउंड था वहाँ पे। मैंने इस क्लास 7th में न्यूमरोलॉजी पढ़ ली थी, वो एक बड़ी अच्छी किताब आती थी कीरो की, सो उस समय बहुत पॉपुलर थी, लगभग हर घर में हुआ करती थी, तो पढ़ी थी। तो एक वाले दो वाले कैसे होते, तीन होते, मुझे तब से आता था। 2020 में लॉकडाउन लगने के बाद घर में कुछ काम करने को था नहीं, तो हमने कहानियाँ सुनानी शुरू करी, क्योंकि विद्या भारती स्कूल से थे तो रामायण महाभारत की, भगवान राम के 5 अंश सुने सत्य जो आपको नहीं पता होंगे, तो लोगों ने पसंद किया। उसके बाद नंबर्स पे बनाया, नंबर्स पे बनाया, तब भी उस समय हमें कई बार ऐसा लगता है ना कि जैसे आप आराम से बोलते रहो कि 8 फिलॉसफीज हैं, पर पहली बार कोई सुन रहा है कि फिलॉसफी भी 8 होती है। तो ऐसी जनता बहुत है जिनको सच में कुछ ज़्यादा नहीं नॉलेज है, न्यूमरोलॉजी की हो गई, फिलॉसफी की हो गई, तो वो मुझे कमेंट में समझ में आता था कि इनको तो मूलांक भी नहीं पता। जैसे मैंने आपसे पूछा आपका मूलांक क्या, आपने कहा 1 हो गया मेरा मूलांक, आपको पता था। पर देर आर स्टिल आज भी 2024 में कई ऐसे लोग हैं, दे डोंट नो व्हाट मूलांक क्या होता है। अच्छा, न्यूमरोलॉजी जैसा कुछ सब्जेक्ट होता है। तो हमने जब रील बनाई तो ये चीज़ मुझे लगता था सबको पता होगा, नहीं पता। तो पहली चीज़ जो भावना आई थी कि एजुकेट करेंगे, टीच करेंगे। आज भी हम यूट्यूब पे इंस्टाग्राम में जो कंटेंट बनाते हैं वो सिर्फ सिखाने वाले पढ़ाने वाले बनाते हैं कि खुद सीख लो, पता चल जाता है दिलचस्पी। तो हमारे साथ जुड़ते ही वही लोग हैं जिनको ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आती है। तो शुरुआत ऐसे ही हुई थी पढ़ाने से, आज भी वही काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे बाकी की चीज़ें हो गई, लोग जुड़ गए, पॉडकास्ट शुरू कर दिया क्योंकि बढ़िया लोगों से मिलने का मन करता रहता था। सो ये कोइंसिडेंशियल करियर है मैं कहूँगा। सबके साथ मेरे ख्याल से जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं उनके साथ ऐसा ही होता है, उनको ये सब्जेक्ट चूज करता है कि तुम पढ़ो मुझे, तुम बढ़ाओ मुझे।
एक 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 अलग जिसे कहते हैं कि एक आपको एक इंटरेस्ट होना चाहिए इसके अंदर, तभी आप इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं।
जब मैं साइंटिफिक बैकग्राउंड से साइंस वगैरह से पढ़ के आया हूँ, DU का स्टूडेंट था मैं, मानता ही नहीं था एस्ट्रोलॉजी को। ठीक है, आप तब तक नहीं मानते हो जब तक दिख नहीं जाता। ठीक है, जैसे चारवाक ने बोला कि वही मानो जो दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हम सब ऐसे ही होते हैं और आज की जनरेशन में बनते भी जा रहे हैं। तो जब ज्योतिष देखा, पढ़ा, सीखा, कौन से, तो मेरी कुंडली में तो लिखा था पहले से कि 2 साल पहले क्या होगा, 4 साल पहले क्या होगा। तो मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, आगे का भी लिखा है कि क्या होगा। आज कुंडली देखकर ये बता देंगे कि आपके घर के साउथ वेस्ट में क्या रखा है। इस लेवल तक एस्ट्रोलॉजी आ चुकी है। मैं इस चीज़ सिखा भी रहा हूँ, मैं क्लास में भी और अपने जो क्लाइंट्स उनको भी बोल रहा हूँ कि आपके मंदिर में लड्डू गोपाल रखे हैं, आपके मंदिर में किसी डेड इंसान की फोटो रखी है।
अच्छा,
एंड दे आर सेइंग ट्रू। आपके साउथ वेस्ट में सनसेट की लाइट आ रही है, ये हॉरोस्कोप में है। तो एस्ट्रोलॉजी से वास्तु को जोड़कर ये बनाया गया है। तो जब आप देखने लग जाते हो कि यार यहाँ पे जो लिखा है वही आपकी लाइफ में हो रहा है, तो आप क्यों बिलीव नहीं करोगे। एस्ट्रोलॉजी को एक तिरस्कृत सब्जेक्ट की तरह देखा जाता है। बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कुछ नहीं होता, फ्रॉड है, ये है, वो है। सिर्फ वही जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं, जिसने इसको एक बार पढ़ लिया वो कभी कहीं नहीं पाएगा। यहाँ से एक और फिलॉसफी पैदा होती है जो कि मेरे मन में चलती है कि सब कुछ तो प्रीडिस्टाइंड है। अगर ये 12-9-12 में 12 राशियां, 12 हाउस, 9 ग्रह में, सब कुछ तो प्रीडिस्टाइंड
है,
नियतिवाद है। ओके, चलो आज इससे नाम मिल गया। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हमारा यहाँ क्या औचित्य है, हमारा हर एक पहलू, हम किस घर में कैसा वास्तु होगा ये भी लिखा हुआ है, हमारे फैसले भी कोई और ही ले रहा है। तो ये सुनकर,
ये है फिलॉसफी में इसका जवाब,
ये सोचकर बड़ा कमजोर लगता है। इसीलिए मुझे लगता है कि लोगों ने कहानियां बनाई कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, ताकि थोड़ा पावरफुल आपको फील हो सके।
नहीं, इसका फिलॉसफी में इसका 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 एक सॉल्यूशन है, जो हमारा खास करके जो गीता का जो एलिमेंट है ना, तो वहाँ पे प्री डेस्टिनेशन की बात हुई है। प्री डेस्टिनी होती है इन द सेंस कि नियतिवाद, इसमें भी अलग अलग स्पेक्ट्रम है ना फिलॉसफी के अंदर, ये अलग अलग स्पेक्ट्रम में आ जाता है। जैसे एक नियतिवाद है, वो कहता है कि नियति में ही सब कुछ लिखा हुआ है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। सो दिस इज निहिलिज्म या फेटलिज्म जिसको बोल देते हैं, कि जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो क्यों करें। लेकिन और एक है कि हम ही सब कुछ करते हैं, लेकिन जो एक बीच का रास्ता है जो गीता में लिखा हुआ है कि चीज़ें कुछ आपके कर्मों के अनुसार डेस्टिन्ड हैं, है ना, लेकिन वो आपको सिर्फ और सिर्फ वो बताएंगी कि चीज़ें आपको कैसे मिलेंगी, कि आपको पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव मिलेगा कि न्यूट्रल मिलेगा। जैसे कि क्या आपको अच्छा स्कूल मिलेगा, ठीक है, अच्छा स्कूल मिलेगा या अच्छे टीचर्स मिलेंगे या नहीं, ये आपका एक कर्मों का डेफिनेशन से हो गया कि भाई कहाँ पैदा हुए, आपके माता पिता की स्थिति क्या थी या आप कहाँ, तो ये उससे डिफाइन हो गया। लेकिन अच्छा स्कूल मिलने के बाद भी क्या आप पढ़े, ये आपके कर्म हो गए। तो जो कर्म और डेस्टिनी है, जैसे बहुत सारे लोग अपनी डेस्टिनी कभी फुलफिल नहीं कर पाते, जैसे अगर अगर मतलब उनके जीवन के अंदर शायद हो सकता है एस्ट्रोलॉजिकली लिखा भी है, या हम उन्हें देखकर भी नहीं होता, कई बार किसी बच्चे को हम देखते हैं या किसी व्यक्ति को हम देखते हैं और हम कहते हैं ये बहुत बड़ा बनेगा एक बार जीवन में, है ना, यानी इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये करेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है आप उस व्यक्ति से 4 साल बाद 5 साल बाद मिलो और आपको रियलाइज़ हो कि यार ये कर सकता था या कर सकती थी लेकिन ये नहीं कर पाएगी अब या नहीं कर पा रहा है, क्यों, उसके शायद जो उसने कर्म, जो उसकी विल पावर थी, जो उसकी खुद के डिसीजंस थे, है ना। अब यहाँ पे एक बड़ा अच्छा फिलोसोफर, मैं मतलब फिलोसफी में ही आ जाती हूँ बार बार, लेकिन एक बहुत अच्छा फिलोसोफर है हेडेगर, वेस्टर्न वर्ल्ड का फिलोसोफर है, तो है तो वो एग्जिस्टेंशियलिस्ट, लेकिन वो उससे उसको हम पढ़ते हैं ना तो ये पूरा जो सॉल्यूशन है ना ये निकल के क्लियर हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि कुछ फैक्टिसिटी होती है, मतलब कुछ फैक्ट्स होते हैं हमारे लाइफ के कि भाई हमारे माँ बाप कैसे मिले हमें, है ना, घर कैसा मिला, कहाँ हम पैदा हुए, वो तो फैक्ट है, उसे नहीं बदल सकते, है ना। इसी को इंडियन फिलोसफी में कर्मों से एक्सप्लेन कर दिया कि कर्म के बेसिस पे मिल गया आपको। लेकिन अब आप डिस्ट्रैक्टेड होके गॉसिपिंग करने लगोगे, चैटर करने लगोगे, ये करने लगोगे, या फिर आप सिंसियर होके अपना काम करके अपनी जो आप जिसे कहते हैं पॉसिबिलिटी बोलते हैं उसको, कि मतलब पॉसिबल है कि आप हो सकते हो, है ना, जैसे कि हर इंसान की एक पॉसिबिलिटी है या एक एक उसका पोटेंशियल है कि हो सकता है, लेकिन होगा या नहीं वो कर्मों पर आएगा, और वो कितने लेवल का होगा वो भी कर्मों पर आ जाएगा।
मुझे क्या लगता है कि ये कर्म भी कहीं ना कहीं आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे लिखा हुआ है, ठीक है, सो लेट्स एग्री टू डिसएग्री। कोई और फिलोसफिकल स्टोरी या कहानी या कोई जो आपका बड़ा फेवरेट हो कि ये मेरा बड़ा फेवरेट फिलोसफी है?
मेरी हर फिलोसोफर के साथ है, मुझे ऐसा लगता है कि अलग एक रिलेशनशिप या एक अलग कन्वर्सेशन है, कि बहुत सारी है मतलब बहुत सारी हैं कहानियां, तो
एक तो सुना दीजिए।
अब आपको फिलोसोफर का नाम बताओ, मैं फिर सुना पाऊंगी।
सुक्रेट की कोई सुनाइए।
सुक्रेट की तो ग्रीको रोमन पद्धति के फिलोसोफर रहे हैं सुक्रेट। तो सुक्रेट जो थे ना, उनकी दो चीज़ें बड़ी यूनिक हैं, है ना, एक डायलेक्टिकल मेथड और दूसरा उनकी जो कहानी है जिसमें उन्होंने जहर पी लिया था। तो पहले पहले तो क्या करते थे ना सुक्रेट, सुक्रेट पहले के जो फिलोसोफर्स हुए थे स्टोइक्स, है ना, कई सारे पहले भी वहाँ पे चलते रहते थे ग्रीक में, स्टोइक्स थे, रिलेटिविस्ट थे, ये सब थे, तो उन लोगों से अलग बात करते थे। सुक्रेट बच्चों को कहते थे कि यार अपना सत्य खुद खोजो, है ना, थिंक, और अगर तुम सही सवाल पूछोगे तो जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएगा, मतलब अगर मैंने सही सवाल पूछे तो मुझे भी वही जवाब मिलेगा, और आपने भी सही सवाल पूछे तो आपको भी वही जवाब मिलेगा। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि हम सही सवाल नहीं पूछ रहे हैं। तो वो डायलेक्टिकल मेथड से लोगों को पहुंचाते थे। डायलेक्टिकल मेथड, जैसे वो खड़े हो जाते थे अपने एथेंस के अंदर, वहाँ पे एक थोड़ी सी ऊंची जगह पे हुआ करती थी वहाँ पे, और मुझे लगता है होनी चाहिए डिस्कशन हमारे ना, वो पंचायत सिस्टम या जो एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के जो सिस्टम्स हैं, शायद वो खत्म हो गया, शायद वो नया फॉर्मेट शायद पॉडकास्ट हो गया है, है ना। तो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करते थे, तो बच्चे बहुत यंगस्टर्स उनके आसपास इकट्ठे हो जाते थे। तो सुक्रेट उनको कहते थे कि बताओ सत्य क्या है, है ना, तो कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, फिर अब बस सुक्रेट सिर्फ सवाल करते थे, अच्छा अगर सत्य ये है तो ये क्या है, अगर सत्य ये नहीं है तो ये क्या, बस सवाल करते करते वो व्यक्ति को उस जवाब तक ले आते थे जो एक अपने आप में ऐसा सवाल, ऐसा जवाब होता था जो उसे कोई नहीं काट सकता। लेकिन जब वो ऐसा करते थे, क्योंकि वो लोगों को समझाते थे कि डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल सिस्टम पे बहुत बातें करते थे, और जब भी कोई पॉलिटिकल सिस्टम पे बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो क्या हो जाता है कि पॉलिटिशियंस जो उस समय के थे उनके
एनिमी बन गए।
उन्होंने कहा ये आदमी यूथ में बड़ा पॉपुलर हो रहा है और ये बड़ा उसके खिलाफ बोल रहा है, पॉलिटी के खिलाफ बोल रहा है, या हमारी एक्शंस पे बातें हो रही हैं। तो उन्होंने उसको चार्ज कर दिया कि अब इस व्यक्ति को मतलब जेल में डाल दो, क्योंकि ये यूथ को भ्रमित कर रहा है या मिसडायरेक्ट कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, तो इस चार्ज पे उन्हें जेल में डाल दिया गया। और जब जेल में डाल दिया गया, लेकिन उनके सपोर्टर बहुत थे, बच्चे भी थे, एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनके कई सपोर्टर्स थे, तो उनके एक सपोर्टर ने उनको कहा कि सुकरात आप भाग जाइए, है ना, मैं आपको चाबी दे रहा हूँ, आप अपना ये खोलो, जेल खोलो और आप भाग जाओ, आपके लिए सब तैयार है, आपको एकदम सेफ जगह पे हम लोग पहुँचा देंगे। लेकिन सुकरात ने बोला कि नहीं, है ना, उसने कहा कि अगर मैं आज भाग गया तो ये हो जाएगा कि जो सत्य कहता है, यानी मैं खुद गलत था जो मैंने नहीं माना और मुझे भागना पड़ गया, तो ही डिड नॉट रन अवे। उसने बड़ी खुशी से पॉइजन पी लिया, और आज भी मतलब इस बात को वो माना जाता है कि ही डिड नॉट रन अवे, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति सही कर रहा है तो उसे भागने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वो सत्य के ऊपर अटल रहे, अपने सत्य के ऊपर वो बहुत लंबे समय तक अटल रहे। तो इनकी तो दोनों चीज़ें हैं, उनकी एक कोटेशन है, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, यानी जिस जीवन को हमने एग्जामिन ही नहीं किया, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सही है गलत है, अगर मैंने कभी सोचा ही नहीं तो उस जीवन का क्या फ़ायदा, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। जैसे बहुत बार है ना, मैं बच्चों से पूछती हूँ कि क्यों बनना है सिविल सर्वेंट, या फिर क्यों करना है ये, बहुतों के पास जवाब ही नहीं होता, क्यों का कोई जवाब ही नहीं है उनके पास कि क्यों करना है, तो वो क्योंकि शायद उन्होंने उस तरह से सोचा नहीं है। तो अगर सुकरात के नज़रिए से देते तो सुकरात कहेगा कि भाई ये पैशन पर ये वाली चीज़ परस्यू करने का फ़ायदा नहीं है अगर तुम्हें ये नहीं पता कि क्यों। तो दोनों चीज़ें उसकी बड़ी यूनिक है, एक डायलेक्टिकल मेथड कि अगर आपको किसी व्यक्ति, जैसे मैं भी कई बार यूज़ करती हूँ एज अ टीचर, इंस्पायर होके सुकरात से थोड़ा सा ऐसे ना थोड़ा सा बोरो करके, कि कभी कोई व्यक्ति बच्चा मुझसे बात करता है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं सवाल के थ्रू ही उससे एक उसको वहाँ तक पहुँचा दूँ जहाँ पे वो खुद ही समझ जाएगा, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन इज द बेस्ट रियलाइजेशन।
कहते हैं कि किसी चीज़ की जड़ तक पहुँचना है तो 7 बार वाई बोलो कि हाँ। इस दीवार में क्रैक है क्यों, क्योंकि यहाँ पे पानी आ रहा है कहीं से, पानी क्यों आ रहा है, ओके वहाँ पे प्लम्बिंग का इशू है, फिर क्यों है वहाँ पे इशू, क्योंकि 3 महीने पहले मैंने बनवाया नहीं, क्यों नहीं बनवाया मेरे पापा, तो आप आ जाओगे कि वहाँ पे क्रैक क्यों है, अगर आप 7 बार क्वेश्चन
सात बार करेंगे, बिल्कुल।
सो इंटरेस्टिंग है, आज मेरा इस सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी दिलचस्पी बढ़ी है आपकी वजह से। और अगर मान लीजिए कोई ये पॉडकास्ट सुन रहा है और उसको फिलोसफी पढ़ने का मन कर जाए, तो उसे पहली कौन सी बुक या कोई वीडियोज हों जो आप रिकमेंड करोगे?
फिलोसफी की वीडियोज़ तो यूट्यूब पर खैर बहुत सारी होंगी ही, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, मैं तो क्लास में पढ़ाती हूँ तो मेरे तो कुछ लेक्चर वेक्चर डाल देते हैं हम लोग यूट्यूब पे, लेकिन ऐसे प्रॉपर
आम किसी को स्टार्ट करना है तो कोई हाँ। बुक हो फिलॉसफी की,
बुक हिंदी या मतलब इंडियन फिलॉसफी के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब एक्चुअली ऐसी कोई बहुत ज़्यादा किताबें ना आम भाषा में नहीं लिखी गई हैं, ज़्यादातर किताबें जो हैं इंडियन फिलॉसफी के लिए वो लिखी गई है थोड़ी ना संस्कृत और कलिष्ठ भाषा में।
ओके
तो अगर पढ़ना हो किसी को तो दत्ता एंड चैटर्जी कर एक किताब है ना, वो पढ़ सकते हैं, पर अगेन उसमें थोड़ा सा जहाँ संस्कृत ज़्यादा आए या ऐसे टर्म्स हो आप उन्हें अवॉइड कर सकते हो।
नहीं तो आपके यूट्यूब वीडियोस हैं?
मैं बहुत कम है वो इक्का दुक्का लेक्चर पढ़े हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कभी मैंने इसको ऐसे वो मेरा मन बहुत करता है, मेरा बहुत मन है कि सारी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन में बेहतर हुआ जब मैंने फिलोसोफर्स पढ़े या फिलोसफी पढ़ी, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि फिलोसोफर फिलोसफीज पे बात होनी चाहिए, है ना, एक 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 जनरल डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि एक वो एक कहावत भी है ना कि एन आइडिया कैन चेंज अ लाइफ, एन आइडिया कैन चेंज अ वर्ल्ड,
समझ बढ़ती है,
समझ बढ़ जाती
है आपको चीज़ों को देखने के मल्टीपल व्यूज मिल जाते हैं।
वेस्टर्न फिलोसफी के लिए एक किताब है सोफीज वर्ल्ड,
सोफीज वर्ल्ड, ओके
हाँ।
चलिए लास्ट क्वेश्चन मैं तनु जी आपसे पूछूंगा कि ओशो को लेकर आपके क्या थॉट है?
ओशो वेरी वेरी ही इज आल्सो अ फिलोसोफर,
फिलोसफी के टीचर थे
फिलोसोफर थे, और उनकी फिलोसफी बहुत प्रैक्टिकल फिलोसफीज थी, कुछ है ना, डेफिनेटली कई कारणों से कंट्रोवर्शियल हो गए, है ना, दैट इज अगेन अनदर स्टोरी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही वाज अ वेरी रीजनेबल पर्सन। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतने लोगों से बहुत लोगों से मैं मिली हूँ, मैंने खुद भी योशो के कई जो कहते हैं ना लेक्चर्स सुने हैं, और जिन लोगों ने सुने हैं मैंने देखा है कि वो अपने जीवन में ज़्यादा सॉर्टेड हैं, ज़्यादा मतलब नॉर्मल रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ओशो ने भी यही किया कि जितनी फिलोसफीज थी यही सब जैनिज्म, बुद्धिज्म, वेदांत और इन सब को लिया, इसके एसेंस को पकड़ के उन्होंने ह्यूमन लाइफ पे बात करी कि अगर वो बता रहे हैं कि हमें गुस्सा क्यों आता है, तो बेसिकली इन्हीं सब फिलोसफीज का एक क्रक्स निकाला कि क्योंकि कहीं ना कहीं जाके ना जब हम बहुत बार सारी फिलोसफीज को पढ़ते हैं तो ये शायद हम शाब्दिक तौर पे ना कर पाएं, लेकिन अंदर से एक रियलाइजेशन आता है कि कहीं ना कहीं सब एक ही सी बात कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं जो बिल्कुल एक जैसी सी नहीं लग रही हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो सिनर्जी दिख जाएगी। तो बस वो जो सिनर्जिस्टिक पॉइंट है उसी पे ओशो ने बहुत अच्छे से बातें करी हैं, आम भाषा में बातें करी हैं, रियल लाइफ पे बातें करी हैं, जो कंसर्न्स हैं हमारे, शायद हमें, हम लोगों को, ज़्यादातर लोग बच्चे सुन रहे हैं, अगर बच्चे को आप मोक्ष की बात करोगे तो ये मोक्ष से मुझे क्या, अभी अभी तो मतलब मैं बच्चे हूँ, हम तो बच्चे हैं, हमें मोक्ष से कोई मतलब नहीं है, तो उसके पहले की जो दिक्कतें हैं कि कन्फ्यूजन क्यों है मुझे, मैं परेशान क्यों हूँ, या मेरी लाइफ के रिलेशनशिप्स ऐसे क्यों हैं, या मेरा प्रोफेशनल प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो जो रियल लाइफ मैटर्स हैं ना, इन पे ओशो ने बात करी। और आई ऑलवेज से कि ही इज़ वन ऑफ अ वेरी गुड सेल्फ हेल्प फिलोसोफर।
और मैंने ये भी देखा है कि ओशो लॉजिकल बातें करते हैं,
लॉजिकल,
वो एक ही चीज़ को कि सिगरेट पीना अच्छा क्यों इस पर भी बोल सकते हैं और सिगरेट पीना बुरा क्यों उस पर भी लॉजिक दे सकते हैं।
हाँ।
और एंड में वो छोड़ देते हैं आपको कि आप डिसाइड करो, ठीक है,
फिलॉसफी को भी जवाब देती नहीं।
हाँ, ये सही कह रहे हो, फिलॉसफी जवाब नहीं देती, आपको सोचने में मजबूर करती है,
वो आपको आपको ना आइडियाज दे देती है और फिर आप अपने आप एक अपना डिसीजन बनाते हो कि भाई मेरे को ये चीज़, जैसे हम इतनी सारी फिलॉसफीज पढ़ते हैं, है ना, तो आपको हर फिलोसोफर की बात कहीं ना कहीं सही लगेगी और कहीं ना कहीं लगेगा नहीं नहीं ये नहीं है इसमें, तो वो कोई कोई एक परफेक्ट फिलॉसफी नहीं हो सकती। और ये भी एक सत्य है, एक फिलॉसफर हुए हैं, एक व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने बताया, बोला है आई थिंक विलियम जेम्स के, कोई भी व्यक्ति बिना फिलॉसफी के हो ही नहीं सकता, यानी कि हर व्यक्ति की अपनी एक फिलॉसफी होती है, हर व्यक्ति की, है ना, चाहे उसे पता है चाहे नहीं पता,
हम बात भाषा में कहते भी हैं कि मेरी जिंदगी की फिलॉसफी है,
मेरी जिंदगी तो हर आदमी की अपनी फिलॉसफी है, छोटे छोटे बच्चे की फिलॉसफी है अपनी, उसको पता नहीं है कि वो जो कर रहा है वो अपनी फिलॉसफी के वशीभूत कर रहा है ना, अगर वो आज झूठ बोल रहा है तो वो किसी फिलॉसफी के वशीभूत होके झूठ बोल रहा है, या वो मेहनत कर रहा है तो किसी फिलॉसफी के वशीभूत होके मेहनत कर रहा है, तो उसे पता नहीं है ये बात, लेकिन असलियत में हर व्यक्ति की अपनी फिलॉसफी है। अब वो फिलॉसफी अगर इनकंसिस्टेंट होगी, मतलब अच्छी नहीं होगी, है ना, इसमें उसमें बार बार कहीं कहीं पे प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर प्रॉब्लमैटिक होगी तो इंसान कंफ्यूज रहेगा, परेशान रहेगा, और अगर कंसिस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट मतलब एक जैसी सी होगी, कथनी करने में फ़र्क नहीं होगा हमारी, है ना, सोचना कथनी करने में फ़र्क नहीं है, तो हमारे जीवन ज़्यादा बेहतर तरीके से हम जी पाएंगे।
कोई आपका कोट जो आपको बहुत पसंद हो?
मेरा कोट, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं है।
ये कैसा है?
अगर आपको जीवन में कुछ भी चाहिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी,
मरना पड़ेगा,
मतलब व्हाटएवर, स्वर्ग मतलब समथिंग विच वी डिजायर, और अपने बिना मतलब आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे।
ये इसका ऐसा भी कि आपके तो काफी के हैं, आप ही को सॉल्व करने पड़ेंगे।
हाँ, अगर हम अपने परेशानियों की ओनरशिप नहीं लेंगे और हम चाहेंगे हमारे परेशानियों की ओनरशिप भी कोई और ले ले, देन इट इज, तो फिर स्वर्ग की कामना नहीं करनी चाहिए। स्वर्ग मतलब इन द सेंस वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, है ना, सपोजिडली कोई व्यक्ति है वो कुछ भी करना चाहता है ना, कोई सिलेक्शन चाहता है या कोई लीडर बनना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो अगर चाहते हो तो तुम्हें उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जो उसके लिए ज़रूरी है ना, और अगर तुम प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते तो उसकी कामना भी छोड़नी पड़ेगी। तो मतलब दिस इज़ वाई माय लॉजिक कि या तो कामना मत करो तब भी ठीक है लाइफ, ज़रूरी थोड़ा ना कामना करनी है, को सारे फिलोसोफर्स कह के गई है कि कामना मत करो, कामना से दुख होता है, परेशानी होती है,
अटैचमेंट
होती है, या फिर अगर कामना कर रहे हो
तो मेहनत करो,
तो प्रोसेस से फॉलो करो, तो अगर स्वर्ग चाहिए तो मरना पड़ेगा.
अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता. तो तनु मैम, अब हम रैपिड फायर राउंड करेंगे. इसमें मैं आपसे सवाल पूछूंगा,
हाँ.
आपको या तो एक शब्द या एक वाक्य में इसका आंसर देना, जो भी आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट आए.
ठीक.
आपके जीवन का सबसे बड़ा सबक?
अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता.
वो पहली चीज क्या है जो आप सुबह करते हो?
अपने बेटे की शक्ल देखना और मुस्कुराना.
आपका पसंदीदा आध्यात्मिक स्थान?
स्थान नहीं है, पर मुझे लगता है कि जब भी आध्यात्मिक होते हैं तो तब वहीं पे ही मतलब अच्छा लगता है. कोई ऐसे स्पेसिफिक स्थान नहीं है.
टीचर और सिविल सर्वेंट?
टीचर. आई हैव ऑलरेडी मेड अ चॉइस.
वो एक बुक जिसने आपके थॉट प्रोसेस को बदल दिया हो?
बहुत सारी हैं.
कोई एक?
बहुत सारी हैं. गीता.
गीता. सच्ची खुशी के लिए आप एक शब्द क्या कहना चाहेंगे?
इट्स इनसाइड.
कोई ऐसा लक्ष्य जो अभी रह गया है?
बहुत सारे हैं, अभी तो करा क्या है.
कोई मंत्र या श्लोक जो आपको पसंद हो या आप बार बार रिसाइट करते हो?
वो भी बहुत सारे हैं.
सब कुछ बहुत सारा
है. नमोरियंतानम. अब वही तो मेरे एक है ही नहीं ना. ऐसे नमोरियंतानम से लेके भक्तांबर, ओसघरम, तो बहुत सारे. गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा.
तो अगर आपको मौका दिया जाए कि आज से 20 साल पहले आप चले जाओगे, ठीक है, आपके पास बुद्धि यही रहेगी, नॉलेज इन्फॉर्मेशन यही रहेगी, तो क्या आप दोबारा यूपीएससी दोगे?
बिल्कुल.
क्या टीचर बनोगे?
नहीं, पहले तो यूपीएससी करूंगी. यूपीएससी करने के बाद, नौकरी करने के बाद छोड़ के फिर टीचर बनूंगी.
कोई और करियर चॉइस करने का चॉइस हुआ तो कौन सा करियर? अगर यूपीएससी या टीचर के अलावा क्या होती है तनु जैन?
क्या होती आज के अगर सिनेरियो में देखूं तो मैं भी एआई एक्सपर्ट.
इंटरेस्टिंग. थैंक यू सो मच तनु जी, आपका रैपिड फायर राउंड.
थैंक यू.
तनु मैम, ये पॉडकास्ट के बाद मुझे एक बात और आज दोबारा से रियलाइज हो गई कि लाइफ में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और हर चीज़, चाहे वो फिलॉसफी हो या कोई भी हो, हमें हमेशा निरंतर, चाहे जो उम्र, पढ़ते रहना चाहिए. हमारी समझ बढ़ती है. हमें डिसएग्री भी करना चाहिए, अग्री भी करना चाहिए, उससे भी समझ बढ़ती है और हम काफ़ी शांत होते हैं खुद में. एजुकेशन से, पढ़ने से जीवन जीना और आसान हो जाता है, समझ आ जाता है. अब आपके रिश्ते भी बेहतर हो जाते हैं. आप समझते हो कि गुस्सा कर रहा है, कब तक करेगा, ठीक हो जाना है. आपका व्यवहार बदल जाता है. सो थैंक यू सो मच ये रियलाइज करवाने के लिए. थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट.
थैंक यू.
राधे राधे.
राधे राधे.